भाई गौर प्रेमानंदे। है नहीं तो कैसे बना दूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते
ओम
वासुदेवाय,
नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम
आप
नमो भगवते वासुदेवाय।
सबका इस मायापुर यात्रा के अंतिम सत्र में स्वागत है। अंतिम सत्र की कथा आगे बढ़ाने के पहले मैं बताना चाहता हूं कि मायापुर की यात्रा की तैयारी करते समय भी मुझे ध्यान में आया था कि 9 द्वीपों की यात्रा एक दिन में करना असंभव है। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को न्याय देना एक दिन में, 9 9 खंडों के साथ, 9 दिन, 9 द्वीपों के साथ में, ये नामुमकिन चीज़ है। लेकिन फिर भी हमने ये प्रयास किया है कि अधिक मास में तीनों श्रेष्ठ धाम जो है वो दर्शन किए जाएं। इसलिए संक्षेप में क्यों न हो, हमने अधिक मास में नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन और जगन्नाथपुरी और मायापुर की यात्रा करने का पूरा प्रयत्न किया है। कार्तिक मंथ में फिर हम वृंदावन के 7 मंदिरों की और बाकी स्थानों का दर्शन करेंगे। सो महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे मन में ये जो तीव्र इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए धाम का दर्शन करने की, धाम की कथा सुनने की, ये जिजीविषा उत्पन्न होनी चाहिए। ये उद्देश्य भी सफल हो गया तो भी हमारी यात्रा सफल है। आज की कथा संक्षेप दर्शन करने के पश्चात चैतन्य चरितामृत ग्रंथ खोलने की भी इच्छा हुई तो भी हमारी यात्रा सफल है। तो आगे हम अभी मध्य द्वीप और कोल द्वीप जाने का प्रयास करेंगे। इससे 2 द्वीप और बच जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, वैसे एक चक्र धाम भी बच जाता है क्योंकि वो एक विशाल धाम है। उसके अंदर तो प्रवेश करना ही, अभी लगता है कि वो प्रवेश करेंगे तो रात हो जाएगी एक चक्र धाम की। लेकिन संक्षेप में हम अभी शुरुआत में बताना चाहेंगे कि नित्यानंद प्रभु का जन्म एक चक्र धाम में हुआ था। उनके माता पिता का नाम हराई पंडित और पद्मावती देवी था। उनके गांव में यमुना जी बहती है, वहाँ गंगा नहीं बहती है लेकिन यहाँ यमुना जी बहती है। यमुना जी छोटे से प्रवाह में प्रकट हुई है वहाँ पर, और वहाँ पर भीमसेन ने बकासुर का वध किया था। द्वापर युग में वनवास में आए थे वहाँ पर, तो एक ब्राह्मण के परिवार में थे, तो उनके पुत्र के वध करने का समय आया बकासुर के द्वारा। तो भीमसेन ने फिर सारा भोजन भी खा लिया और बकासुर का वध किया, वो भी एक चक्रग्राम में था। और एक चक्रग्राम में नित्यानंद प्रभु ने अद्भुत लीलाएं की। पूरे बचपन में अपने जितने भी पौराणिक कथाएं हैं उन सबकी नाटिकाएं बाल लीला में प्रस्तुत की। एक समय पर विद्यालय से आते हुए बालकों को उन्होंने पेड़ पर बैठकर एक बार खाली निहारा, देखा खाली उनको, तो वो ऐसे पत्तों की तरह गिर गए भाव में विभोर होकर। और एक बार उन्होंने विद्यार्थियों को मिले और उनके साथ में कीर्तन करना आरंभ किया, तो नित्यानंद प्रभु ने उन बालकों के साथ 90 दिन तक कीर्तन किया। 90 दिन तक लगातार दिन रात कीर्तन किया, ना भोजन खाया, ना निद्रा लिया, ना विश्राम किया, ना कुछ नहीं किया। 90 दिन तक अति आनंद का, आनंद विभोरता का अनुभव बालकों को दिया। ऐसे बहुत चमत्कारिक अनुभव नित्यानंद प्रभु के जीवन काल में दिखाने देखने को मिलते हैं। जगाए बजाए के उद्धार में उनका प्रमुख हाथ था। यथावकाश एक सन्यासी आया और नित्यानंद प्रभु को लेकर गया। उसके साथ नित्यानंद प्रभु ने पूरे भारत भर तीर्थ यात्रा भ्रमण किया। उसके बाद वो वृंदावन आए और श्रृंगारवट में उन्होंने कुछ देर निवास किया, अपने अश्रु बहाए कृष्ण की याद में, और फिर यथा योग्य समय पर वो नवद्वीप में आए और नंदन आचार्य के घर में छुपे। और उन्होंने कहा कि अगर वास्तव में श्री कृष्ण मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, हाँ, अगर अवतार ले चुके हैं कलयुग में तो मुझे वो यहाँ आकर मिलेंगे। इस तरह से हमारे इस्कॉन मंदिर के गंगा जी की ओर का जो हिस्सा है बाएं तरफ, वहाँ पर नंदन आचार्य का आश्रम है, नंदन आचार्य हाउस, इसको ईशोद्यान भी कहते हैं। तो महाप्रभु चैतन्य वहाँ पर ढूंढते ढूंढते आए थे और वहाँ पर दो ईशो का उद्यान यानी दो भगवानों ने अपना सुंदर मिलन का लीला किया। ऐसे नित्यानंद प्रभु की लीला है। तो कभी विशेष समय पर हम वहाँ पर जाकर पूरा दर्शन कराएंगे। और वहाँ पर भी बांका राय का मंदिर है, बंकिम राय का, उसी में नित्यानंद प्रभु अंतर्धान हुए थे। और फिर उसके बाद में जाह्नवा देवी उस गांव में आई थी, उनकी पत्नी, और एक एक ही व्यक्ति वहाँ पर, एक वृद्ध व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित था, उसने पूरा एक चक्र धाम का दर्शन जाह्नवा देवी को कराया था और जाह्नवा देवी ने अपने पति के जन्म स्थान का दर्शन किया था। तो अभी हम प्रयास करेंगे कि मध्य द्वीप जाने का प्रयास करेंगे। तो ये मध्य द्वीप जो है, इसका सबको दिखाई पड़ रहा है? ओके। तो ये मध्य द्वीप जो है वो विशेष एक तीर्थ द्वीप है जिसमें सात पर्वत थे और वो सात पर्वत सात ऋषि रूप थे। सात ऋषि कौन थे? सप्त ऋषि कहते हैं उनको, कश्यप मुनि, अत्रि मुनि, वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र मुनि, गौतम मुनि, जमदग्नि और भारद्वाज। इनको सप्त ऋषि के होने का भाग्य प्राप्त है। वो सप्त ऋषि जो हैं वो अपने पिताजी ब्रह्मा जी के पास बैठकर एक बार गौरांग नाम की महिमा का गुणगान कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि आप गौरांग महाप्रभु का इतना प्रेम से नाम ले रहे हो, आप जरूर उनकी कृपा प्राप्त करोगे। तो उन्होंने कहा कि आप नवद्वीप जाओ और मध्य द्वीप में जाकर आप भजन करो। तो सात पर्वतों के रूप में इन सात ऋषियों ने वहाँ पर तपस्या करी और तपस्या के पश्चात मध्यान्ह के समय, दोपहर के समय श्री चैतन्य महाप्रभु वहाँ अवतरित हुए। अब ये चैतन्य महाप्रभु कलयुग, जिस अवतार कलयुग में आने वाला है, उसके बहुत पहले की बात है, ये बहुत ही पहले की बात है। लेकिन सप्त ऋषियों के तपस्या के प्रतिसाद के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको मध्यान्ह में दर्शन दिया, इसलिए इस द्वीप का नाम पड़ा मध्य द्वीप, यानी दिन के मध्य में उन्होंने सप्त ऋषियों को दर्शन दिया, वरदान दिया कि आप लोग, मैं जब कलयुग में इस रूप में आऊंगा, संकीर्तन करूंगा, इस संकीर्तन के प्रेम रस का आनंद आपको मिलेगा, आप उसका अनुभव कर पाएंगे। तो इस तरह से ये सप्त ऋषि, अभी वो सप्त तील तो नहीं है, वो सब अदृश्य है, लेकिन सत्ययुग में सात वहाँ पर पर्वत थे, सात तील थे। उसके आगे सप्त द्वीप, मध्य द्वीप का महात्म्य ये है कि मध्य द्वीप में नैमिषारण्य प्रकट हुआ था। मध्य द्वीप में नैमिषारण्य प्रकट हुआ था, आप जानते हैं नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी के नेतृत्व में श्रीमद् भागवत का कथा हुई थी और श्रीमद् भागवत की कथा में प्रधान श्रोता शौनक मुनि थे और 88,000 ऋषि मुनि वहाँ पर एकत्र हुए थे। विश्व के कल्याण के लिए आने वाले कलयुग में जगत का उद्धार कैसे किया जाए, इस बात को सोचकर नैमिषारण्य में श्रीमद् भागवत कथा हुई थी और सुखदेव जी के कथा में सूत गोस्वामी थे और इन सूत गोस्वामी को बलराम जी के तरफ भी बहुत बल दिया गया था और इन्होंने फिर आगे जाकर मध्य द्वीप में उन्होंने गौर भागवत कथा करना आरंभ किया। जब सूत गोस्वामी मध्य द्वीप में गौर कथा, गौर भागवत कथा आरंभ किए तो सारे देवता लोग वहाँ भागे, ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र जी, वरुण जी, सभी वहाँ पर आए। और शिव जी को उस समय इतनी उत्कंठा हुई कि उन्होंने अपने वाहन को छोड़ दिया, क्योंकि उनको पता था कि ब्रह्मा जी का जो वाहन है मेरे वाहन से भी बड़ा तेज है, इसलिए उन्होंने अपना वाहन छोड़ दिया और ब्रह्मा जी के वाहन पर बैठ गए, जिसको कहते हैं हंस, तो इसलिए इस स्थान का नाम है हंस वाहना। और ब्रह्मा जी के साथ हंस पर दो दो भी सवारी बैठे हैं, ब्रह्मा जी भी बैठे हुए हैं और शिव जी भी बैठे हुए हैं। कहते हैं कि शिव जी इतने उत्सुक थे, इतनी उत्कंठा थी उन्हें कि उनके शरीर का तापमान बढ़ने लगा, जोरदार तापमान बढ़ने लगा और वो फिर वहाँ पर आए और उन्होंने सूत गोस्वामी के मुख से गौर भागवत कथा सुनी। तो शिव जी से हम यहाँ पर प्रार्थना करते हैं कि आपके अंदर जो उत्सुकता है, उत्कंठा है, इसको कहते हैं लौल्यम। रूप गोस्वामी उपदेशामृत में इसको लौल्यम कहते हैं, भगवान के प्रति लालसा। और वो चाहे भगवान के नाम के प्रति हो, भगवान की कथा के प्रति हो, भगवान की सेवा के प्रति हो, भगवान के धाम के प्रति हो, या भगवान के रूप के प्रति हो, भगवान के विषय में लालसा होना और दुनिया के विषय में लालसा न होना, ये बहुत आवश्यक है। तो ऐसे लौल्य के लिए, ऐसी लालसा के लिए हम शिव जी को प्रणाम करते हैं। तो इतनी उत्कंठा से सब कुछ छोड़कर वहाँ पर भाग कर आए थे। तो आज भी वो जो शिव जी का लिंग है वो वहाँ के पास के सरोवर के अंदर रखते हैं, क्योंकि वो अपने उत्कंठा की वजह से उष्ण हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, इसलिए उनको साल भर उस नदी के अंदर रखते हैं। और साल के 3 दिन केवल बाहर लेके आते हैं, और बाहर लाने के बाद भी 3 दिन भी उनके अंदर सतत जल का वर्षाव करते रहते हैं। 3 दिन के लिए बाहर आके पूजा करते हैं, फिर भी 3ों दिन उनके ऊपर जल की वर्षा करते रहते हैं। ऐसे हंस वाहन शिव जी का दर्शन मध्य द्वीप में है। आप अगर जाएंगे तो रोड पे ही इसका एक मंदिर आएगा जिसमें हंस का दर्शन है। आप कराता हूँ दर्शन, ये देखिए, ये हंस का दर्शन है। बहुत प्राचीन और बहुत अद्भुत मूर्ति है, किसी को ज्ञान भी नहीं इसके बारे में। एक छोटी झोपड़ी में रखा गया है इनको, और ये हंस का दर्शन अलग तरीके से आप देख सकते हैं। ये सामने से है, ये बाजू से है, और ये उनका हिस्सा है जहाँ पर दोनों विराजमान रहे हैं। तो आप इस हंस को प्रणाम कीजिए, क्योंकि इन पर ही बैठकर ब्रह्मा जी और शिव जी आए थे पृथ्वी तल पर मध्य द्वीप में श्रीमद् भागवत सुनने के लिए। तो इस प्रकार से ये जो मध्य द्वीप है, इसका नाम है मामागाछी। हाँ, और इसमें भी एक सुंदर एक मंदिर है जो रथ के पहियों पर बनाया गया है, किसी एक व्यक्ति ने, माता जी ने बनाया है, बहुत सुंदर मंदिर, उसका भी दर्शन कर लीजिए। देखिए राइट साइड में जो मंदिर है वो भी आपको दिखाई पड़ रहा है, और अंदर जाएंगे तो ये माता जी जो है वो महान सिद्ध भक्त थी, उनके द्वारा ये सुंदर मंदिर बनाया गया। और बाजू में तुलसी वृंदावन, सोन चाफा का बगीचा है, उसका भी दर्शन कर लीजिए। तो हम अभी यहाँ से आगे चलते हैं कोला द्वीप की ओर। हाँ, मध्य द्वीप का दर्शन करके हम आगे चलते हैं कोला द्वीप की ओर। कोला द्वीप कहाँ गया? कोला द्वीप, तो कोल द्वीप, ये आज के तारीख में इसको नवद्वीप सिटी कहते हैं। वैसे नवद्वीप जो पौराणिक है वो 9 द्वीपों को मिलकर नवद्वीप कहा जाता है, लेकिन जैसे वृंदावन भी आज भौगोलिक वृंदावन हो गया और एक पौराणिक वृंदावन है, वैसे जो भौगोलिक वृंदावन है वो भौगोलिक नवद्वीप जो है वो एक्चुअली कोल द्वीप है। तो कोल द्वीप का और एक नाम, एक पहाड़, एक नाम है कुलिया पहाड़, क्योंकि यहाँ पर कुलिया पहाड़ यानी यहाँ पर एक पर्वत था जिसके ऊपर वराह देव भगवान ने अवतार लेकर इसी जगह पर हिरण्याक्ष का वध किया था। तो यहाँ पर एक भक्त था वासुदेव नाम का, वो हर रोज वराह देव की मूर्ति की पूजा करता था। बड़े भक्ति भाव से उनको वन के फूलों की माला, वन के जो कंदमूल है, वन के जो फल है, और विविध प्रकार के फूलों की माला, हर प्रकार के व्यंजनों को लगाकर वो नरस वराह देव भगवान की पूजा करता था। उनके पूजा से प्रसन्न होकर साक्षात वराह देव ने वासुदेव को दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हारे भजन से बहुत प्रसन्न हूँ। और स्वयं उन्होंने कहा कि यही वो पहाड़ है जिसके ऊपर मैं प्रकट हुआ था सत्ययुग में, और यहीं पर हिरण्याक्ष से मेरा युद्ध हुआ था, मैंने मेरे दोनों दांतों से हिरण्याक्ष को चीर फाड़ कर वध किया था उसका। और कहा था कि ये जो कुलिया पहाड़ है ये साक्षात गोवर्धन है, ये वृंदावन के गोवर्धन से अभिन्न है, ऐसे उन्होंने कहा था। और कहा था कि आप कलयुग में जब मैं आऊँगा श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में नवद्वीप में, तो आपको मेरा दर्शन होगा। तो ये पाद सेवनम इस प्रकार के नवदा भक्ति के विधि का द्वीप है कोला द्वीप। कोला यानी वराह, यानी भगवान ने जो रूप लिया था वराह का। ये देखिए, आप देख सकते हैं उनके आंखों के सामने उन्होंने ये वराह का दर्शन दिया, और कोलद्वीप की और एक विशेषता है, कोलद्वीप की विशेषता यह है कि कोलद्वीप में भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने शिवजी और पार्वती को दोनों को आश्रय दिया है। आप ये जानते ही होंगे कि शिवजी पार्वती ने एक त्रैमासिक व्रत किया था, 90 दिन का व्रत किया था, सौगंधिका फूलों को भगवान से अर्पण करते हुए राधा कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्म वैवर्त में उसका वर्णन आता है, 90 दिन का व्रत किया था। उसके फलस्वरूप उनको ब्रज में कहीं भी रहने का भगवान ने आज्ञा दी थी, और उसी प्रकार से सारे धाम में शिवजी को भगवान के धाम में रहने का आदेश प्राप्त है और परमिशन प्राप्त है। तो नवद्वीप में भी हर जगह पर शिवजी महाराज विराजमान हैं। तो कोलाद्वीप में वृद्ध शिव के रूप में विराजमान, ये वृद्ध शिव का दर्शन है। या आप कोलाद्वीप में जब भी बोट से जाएंगे ना, तो हमारे इस्कॉन मंदिर से आगे प्रभुपाद घाट जाएंगे, वहाँ से सीधे यात्रा करेंगे तो सीधे जाएंगे, लेफ्ट में टर्न करेंगे तो जलांगी आएगी, वहाँ पर गोद्रोन द्वीप आएगा, और सीधे चले जाएंगे और अगले द्वीप में उतरेंगे तो वो कोलद्वीप है। उसको उतरते ही, बोट से उतरते ही आपको वृद्ध शिव का दर्शन होगा और प्रौढ़ माया का दर्शन होगा। देखिए, भगवान ने योग माया को वरदान दिया था कि वृंदावन में आप पूर्णमासी के रूप में रहो और नवद्वीप में आप प्रौढ़ माया के रूप में रहो, और आदेश दिया कि जो भी इस धाम में आएंगे, जो मेरे अनुकूल होंगे उनको आप कष्ट मत देना, और जो प्रतिकूल चेतना में आएंगे उनको मेरी कृपा से वंचित रखना। तो प्रौढ़ माया यहाँ पर विराजमान है वृद्ध शिव के बाजू में, और जो जीव चैतन्य महाप्रभु की कृपा के पात्र है उनको कृपा दिलाने में मदद करती है, जो उनकी मति चैतन्य महाप्रभु के प्रतिकूल है उनको कृपा से वंचित रखती है। तो आइए प्रौढ़ माया योग माया को वंदन करते हैं, वृद्ध शिव को वंदन करते हैं और वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो आगे जाएंगे तो हम एक बहुत ही सुंदर और विशेष कोलद्वीप के विशेष मंदिर में जाएंगे। हाँ, ये वो मंदिर है जहाँ पर मैंने कहा था आपको कि जब ही महाप्रभु गौरांगा संन्यास लेने के लिए निकल रहे थे मकर संक्रांति के दिन, तो उस रात को उन्होंने ये मूर्ति प्रकट की और विष्णु प्रिया को दे दी और अपने पादुकाएं भी अर्पण की। हाँ, हम इस मूर्ति का विशेष दर्शन करेंगे क्योंकि ये मूर्ति इतनी विशेष है, अपने दोनों हाथों से जीवों पर कृपा करने के लिए आतुर हैं। हाँ, इनके चरणों का वंदन कीजिए। इसी मूर्ति के सान्निध्य में विष्णु प्रिया ने 80 साल गुजारे अपने जीवन के, 16 साल की उम्र से 96 साल तक एक छोटी सी बालिका के रूप से, फिर युवा अवस्था, फिर मध्यम अवस्था, फिर वृद्ध अवस्था, फिर अति वृद्ध अवस्था, फिर अति अति वृद्ध अवस्था, 96 साल तक उन्होंने इस मूर्ति की सेवा की। और कैसे कि उसके कुछ साल इस मूर्ति के साथ और पादुकाओं के साथ वो अंतरद्वीप में मायापुर में रही, और जब ये बाढ़ आने की संभावना हुई तो ये मूर्ति लेकर ईशान ठाकुर और बंसी के अवतार बंसी वदन ठाकुर, इनको लेकर वो यहाँ पर आई कोलद्वीप में। उसके कुछ ही दिन पहले सची माता का भी देहांत हो चुका था, तो बिल्कुल अकेली हो चुकी थी, दोनों जो उनके सेवक थे वो उनको यहाँ ले आए। और कैसे उन्होंने सेवा किया इनका, बहुत विशेष समझने वाली बात है ये। विष्णु प्रिया के प्रति पर्याप्त मात्रा में कृतज्ञता व्यक्त किए बिना नवद्वीप की यात्रा पूरी नहीं हो सकती, महाप्रभु की लीलाओं का आकलन पूरी तरह से नहीं हो सकता। महाप्रभु के जाने के पश्चात वो तो अपनी माता को कई बार मिले, लेकिन सच्ची माता को तो कई बार मिले, सन्यासी माता को मिल सकता है लेकिन पत्नी को नहीं मिल सकता है। इसलिए कई बार वो वहाँ आए लेकिन उन्होंने नियम से विष्णु प्रिया का दर्शन नहीं किया, इसलिए विष्णु प्रिया को कभी भी दर्शन नहीं हुआ। आज अगर हमें चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन का लाभ हो रहा है, उसमें विष्णु प्रिया के त्याग का एक विशेष अंग है। विष्णु प्रिया ने अगर प्रेम से उनको सम्मति नहीं दी होती तो महाप्रभु की जो हरिनाम संकीर्तन प्रचार लीला है वो उनको देखने को नहीं मिलती थी। देखिए, चैतन्य चरितामृत में उनका वर्णन तब तक आता है जब उस रात को मकर संक्रांति के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु विष्णु प्रिया के साथ में अकेले में बैठे हैं और उनका संवाद हो रहा है कि प्रभु, अगर आपकी इच्छा जीवों को तारने की है तो मैं आपकी इच्छा के बीच में नहीं आना चाहती, बाधा नहीं बनना चाहती, मैं आपको सहायता करना चाहती हूँ, जो आपकी इच्छा है वो आप कर सकते हैं। इस तरह से अपने श्रेष्ठ पातिव्रत्य का उन्होंने प्रदर्शन किया, महाप्रभु जी को प्रसन्न किया, महाप्रभु जी ने मूर्ति प्रकट करके दी। यहीं तक विष्णुप्रिया का उल्लेख चैतन्य चरितामृत में आता है। इसके बाद पूरे चैतन्य चरितामृत में कहीं भी विष्णुप्रिया का उल्लेख नहीं आता है, उनके शरीर छोड़ने का भी उल्लेख नहीं आता है, क्योंकि बीच में 16 साल की उम्र में जब ही उनके पति चले गए संन्यास लेने के लिए, तो उसके 24 साल बाद, यानी 16 और 24 कितने होते हैं, 40 साल, उनके 40 साल की उम्र में चैतन्य महाप्रभु अंतर्धान हो गए और उसके 46 साल बाद तक वो उन्होंने अपना जीवन चलाया। अति अति विरह में, महाप्रभु के अति विरह में उन्होंने अपने जीवन को चलाया। तो ये समझना बहुत जरूरी है, और कैसे चलाया इसकी सुनना भी जरूरी है। सुबह से लेकर रात तक विष्णुप्रिया देवी कुछ चावल के दाने लेती थी और वो एक साइड में रखती थी। एक महामंत्र का उच्चारण करने के पश्चात एक चावल का दाना यहाँ से वहां करती थी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक चावल यहाँ से वहां, फिर दूसरा चावल यहाँ से वहां। ऐसे सुबह से लेकर शाम कर जितने मंत्रों का उच्चारण करती थी प्रेम और भक्ति से, और जितने दाने इकट्ठा होते थे संध्या के समय उतने ही चावल वो पकाती थी, उसका धामेश्वर गौरांग को भोग लगाती थी और उसी को पाती थी। बस इतनी विरक्ति, इतना त्याग, किस लिए? कि हम जैसे पतित जीवों का उद्धार हो सके। हम जैसे पतित लोगों का उद्धार करने के लिए उन्होंने अपने पति को दे दिया, पति को नौछावर कर दिया, समर्पित कर दिया लोक कल्याण के लिए। तो श्री चैतन्य चरितामृत, चैतन्य महाप्रभु का जीवन जो है, उसके पीछे हमेशा कहते हैं ना, बिहाइंड द मोस्ट सक्सेसफुल मैन इज वन वुमन ऑलवेज। उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु के इस दिव्य औदार्य आंदोलन में एक माता उसके उनके पीछे है, वो है विष्णुप्रिया। और विष्णुप्रिया ने इतने विरह में, हाँ, किसी को नहीं मिली वो। उनका जो विरह का दर्द था वो केवल ईशान ठाकुर और वंशीवदन ठाकुर, इन्होंने ही दर्शन किया था। तो हम देख सकते हैं कि ये विग्रह जो है इतने भाव से और इतने भक्ति से इसको पूजन किया गया है। तो ये सची, ये विष्णुप्रिया देवी को सादर वंदन करते हैं। इन्हीं पादुकाओं को सीने से लगाकर उन्हें अपना जीवन बिताया, अपने विरहाग्नि को कुछ हद तक शांत करने का प्रयास किया। तो विष्णुप्रिया के हम अनंत ऋणी हैं, इन्हीं की वजह से चैतन्य चरितामृत का जो आगे 24 साल की लीला जो है, महाप्रभु ने पूरे विश्व पर अपने प्रेम संकीर्तन का वर्षाव किया, सब लोगों को रास लीला का आनंद दिया। ना पात्रे अपात्रे, ना देखिला स्थाने स्थान, ये जो कृपा उन्होंने की अनार्पित, किसी को नहीं दिया था वो कृपा, वो कर पाए सबके ऊपर क्योंकि विष्णुप्रिया ने उनको इस तरह से अनोखा सहयोग दिया गया था। तो धामेश्वर गौरांग की पादुकाओं को स्पर्श करते हुए विष्णुप्रियाओं को चरम चरम भक्ति भाव से प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। और आगे फिर गंगा जी के एक तट पर जाते हैं, आगे जाकर दूसरे तट पर, वहां पर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का भजन कुटी है। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ये भक्ति विनोद ठाकुर के शिक्षा गुरु थे, और इनकी विशेषता ये थी कि ये 146 साल तक जिए, और इतने विचित्र बाबा थे ये, इनको सिद्ध बाबा के रूप में पुकारते हैं। हाँ, आज भी आप वृंदावन जाएंगे ना तो एक सिद्ध बाबा वृंदावन के हमारे जगन्नाथ दास बाबा जी हैं। ब्रजवासी लोग गौड़ीय संप्रदाय में चार सिद्ध बाबाओं को मानते हैं, एक कामवन में, एक गोवर्धन में, एक रणवारी में, एक नंदगांव में। तो उसमें से एक ये जो है रणवारी के सिद्ध बाबा जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, बड़े विचित्र थे ये, बड़े सिद्ध बाबा थे। वहाँ पर वृंदावन में बैठ कर ऐसे हैट हैट करते थे, क्योंकि नवद्वीप में उनके आश्रम में कोई तुलसी की कोई बकरी खा रही थी, उनको डंडे से हटा रहे थे। और अपने थाली में भोजन करते समय कुत्ते भी साथ में खाया करते थे। लोग कहते थे आप तो भक्त हो भगवान के, ऐसे कुत्तों का भोजन नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं ये कुत्ते बहुत स्वामीनिष्ठ और धामनिष्ठ हैं, इनकी तरफ से कोई अपराध नहीं होता है। मनुष्य मनुष्य होता है और धाम में आकर धाम अपराध करता है, लेकिन उससे बड़े धाम के कुत्ते, धाम के श्वान जो है वो अधिक धामनिष्ठ होते हैं, उनके हाथ से धाम का अपराध नहीं होता है। इसलिए इनके केले के पत्ते में ये जब भोजन करते थे, इनके साथ में कुत्ते भी भोजन किया करते थे, बाकी अन्य जीव भी भोजन किया करते थे, उनको रोकते नहीं थे। ऐसे धामनिष्ठ व्यक्ति थे, धाम के कुत्तों के अंदर भी उनकी निष्ठा थी। और अपने उम्र के 144 साल के उम्र में उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु का दिव्य स्थान प्रकट करने में ठाकुर भक्ति विनोद की सहायता की। वो इतने जर्जर हो गए थे, देखो इनके आगे इनका चित्रपट है, ये उनका शिष्य था बिहारी लाल, वो उनको बास्केट में सर पे बिठाकर लेके जाया करता था, जहाँ भी जाना है वो टोकरी में बैठकर जाते थे, वो दर्शन करते थे जहाँ भी जाना है। तो ये गंगा किनारे जगन्नाथ दास बाबा जी की समाधि है। इसमें एक सुंदर स्थान है जिसका फोटोग्राफ मेरे पास नहीं है, उसका नाम है हरे कृष्णा वृक्ष। जिस पेड़ के नीचे बैठकर जगन्नाथ दास बाबा जी ने भजन किया था, वो पेड़ जगन्नाथ दास बाबा जी का मुख से निकला हुआ हरि नाम सुन सुनकर सुन सुनकर खुद सिद्ध हो गया और खुद गौलोक धाम चला गया। उसका जो आत्मा थी वो जगन्नाथ दास बाबा जी के सान्निध्य के वजह से पवित्र होकर गौलोक धाम उसका उद्धार हो गया। वो भी इनके ही आश्रम के आंगन में है। अभी अपने जीवन के बहुत साल उन्होंने वृंदावन में निकाले, बहुत साल, 100 साल के ऊपर होने तक वृंदावन में रहे। वो नंदगांव रहे, वृंदावन रहे और रणवारी नाम के गांव रहे, सब जगह रहे, सूर्यकुंड रहे। सूर्यकुंड में उनका संग जो है वो परम सिद्ध बाबा मधुसूदन बाबा इनके साथ में हुआ, उनके संग में वहाँ रहते थे और वहाँ पर ठाकुर भक्ति विनोद का भी भजन कुटी है और वहाँ पर गौर किशोरदास बाबा जी का भजन कुटी भी वहीं पर है। ये सब लोगों ने अलग अलग समय पर वहाँ पर भजन किया, लेकिन जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज वहाँ बहुत समय तक रहे। और वहाँ पर एक कृष्णदास बाबा रहते थे रणवारी गाँव में, रणवारी सूर्य कुंड बहुत पास पास में है, एक भरना खुर्द में और एक छाता के पास में। तो वो जो बाबा थे रणवारी वाले दूसरे बाबा, उनको रोज राधा रानी का दर्शन हुआ था, होता रहता था। तो राधा रानी दर्शन देकर उनको कहा भी था कि आप ब्रज छोड़ के मत चले जाओ। किसको कहा था? उस बाबा को। फिर भी एक दिन उस बाबा को पता नहीं क्या हुआ, उसको लगा कि चार धाम की यात्रा करनी चाहिए, इसलिए ब्रज छोड़ के चले गए। वो ब्रज छोड़ के चले गए, चार धाम की यात्रा करके लौट के आए। जब चार धाम की यात्रा करके लौट के आए, उस समय हमारे जगन्नाथ दास बाबा जी भी रणवारी में निवास कर रहे थे बिहारी लाल के साथ, एक अलग कुटी में भजन कर रहे थे। तब ये लौट के आए दूसरे बाबा, तो उनके पैर से अग्नि प्रकट हुई और पैर से अग्नि प्रकट होते हुए पैरों को, जंगाओं को, कमर को जलाने लगी। तो बाबा जोर से चिल्लाने लगे, तो उनकी आवाज़ सुनकर जगन्नाथ दास बाबा जी ने बिहारी लाल को कहा, बिहारी चलो मुझे ले चलो, देखना है बाबा जी को क्या हो रहा है। तो उस समय देखा तो क्या, अग्नि बुझ नहीं रही थी किसी प्रयास से। तब जगन्नाथ दास बाबा जी को ये ध्यान में आया कि वृंदावन धाम बहुत कर्रा धाम है, यहाँ पर किया हुआ अपराध सहजता से नहीं लिया जाता, उसका बहुत कठोर परिणाम होता है। ये उस बाबा जी के जीवन में अपनी आंखों से जगन्नाथ दास बाबा जी ने दर्शन किया और उसी समय वो बाबा तो देहांत हो गया, वो तो राधा रानी का आदेश उन्होंने नहीं पाला था, इसलिए उसका परिणाम भुगतना पड़ा। वो भी वैसे सिद्ध बाबा थे, लेकिन फिर भी उनकी आंखों के सामने राधा रानी के आगे आदेश का न पालन करने का जो परिणाम था उन्होंने देखा। उसी समय जगन्नाथ दास बाबा जी वहाँ से निकले और फिर औदार्य धाम नवद्वीप में आ गए और गंगा जी किनारे में कोलद्वीप में निवास करने लगे। और उसके बाद में उन्होंने ठाकुर भक्ति विनोद को अंतरद्वीप चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान का प्रकट करने के लिए सहायता की है। उसके बाद 2 साल के पश्चात में उनका देहांत हुआ है और धाम में वो पधारे हैं। तो ये उनकी समाधि है जहाँ पर उनका ये भजन कुटी और समाधि है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का। और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय हो। गौर अविर्भाव भूमे स्वम निर्देष्टम सज्जन प्रियः वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथा ये ते नमः। ये अपने समय के वैष्णव सार्वभौम थे, मतलब सर्वश्रेष्ठ वैष्णव थे अपने समय के। उनको पूरे नवद्वीप में, पूरे वृंदावन धाम में सम्मान था कि उनके समय के वो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव थे। सार्वभौम का मतलब होता है अधिपति, यानी सम्राट, सार्वभौम, सब जगह के एकमेव अधिपति। तो ये उनका मंत्र में लिखा गया है, गौर अविर्भाव भूमेस्वम। गौर अविर्भाव के भूमेश को, भूमि को निर्देश करके बताया कि ये भूमि है। गौर अविर्भाव भूमेस्वम निर्देष्टम सज्जन प्रिया वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। तो उनको हम प्रणाम करते हैं। उनके मंदिर में बहुत सारे विग्रह हैं, ये देखिए, आप राधा कृष्ण हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, शालिग्राम शिलाएं हैं, गोवर्धन शिलाएं हैं, बहुत सारे विग्रह हैं, लेकिन प्रमुख विग्रह जो है उनकी गौर निताई हैं, जिनकी सेवा उन्होंने की। उनके बहुत बूढ़े होने के पश्चात बिहारी लाल उनकी सेवा करते थे। ये सुंदर दर्शन उनके समाधि मंदिर में है, और उनकी ये छोटा सा विग्रह भी है जो उनके समाधि के बाजू में रखा गया है। उनको प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और कोलद्वीप में आगे जाकर गौर किशोर बाबा जी का भजन जगह जगह भी है। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जितने विरक्त थे, इन्होंने भी ब्रज में कई जगह भजन किया है, नंदगांव, सूर्यकुंड, गोवर्धन, राधा कुंड, वृंदावन, और ये भी बाद में फिर नवद्वीप में आए और इन्हें अपना शरीर छोड़ा, और बड़े विरक्त थे ये। आम ये विशेष करके इनका वर्णन किया गया है कि नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्ति, ये वैराग्य का साक्षात मूर्ति थे। इतना विग्रह, इतना विरह जो था, ये किसी को अपने पास बुलाते नहीं थे। सारे आते थे ना वो धनवान लोग, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, कृपा कीजिए, अच्छा बिजनेस हो जाए, तो कहते थे आओ मेरे पास आके बैठो। और कहाँ बैठते थे लोग, जहाँ टट्टी पेशाब करते थे ना, वहाँ जाके बैठ कर भजन करते थे, ताकि आम आदमी उनके पास पहुँच नहीं पाए। और जो जो आते थे आशीर्वाद मांगने के लिए, उनको कहते थे कि आ जाओ मेरे पास टट्टी पेशाब की जगह बैठो और भजन करो, तब मुझे मेरी कृपा प्राप्त होगी। फिर लोग भाग जाते थे वहाँ से। एक बार ऐसे मार्केट में गए और किसी धनी के पास गए, उसके सिल्क के वस्त्र लिए और सिल्क के वस्त्र पहने, पूरा मार्केट में घूमे, ताकि लोगों को लगे कि बाबा भ्रष्ट हो गया है, अभी देखो सिल्क के कपड़े और सोने के गहने पहन रहा है, ताकि कोई उनके पास आए नहीं आशीर्वाद मांगने के लिए। फिर वो सिल्क के कपड़े लौटा दिए, फिर जाके उधर ही टट्टी पेशाब की जगह पे बैठ के भजन करने लगे। ऐसे अद्भुत विरक्त बाबा थे। लेकिन ठाकुर भक्ति सिद्धांत जी की उनकी बड़ी कृपा थी। उन्होंने ठाकुर भक्ति सिद्धांत उनके एक ही शिष्य थे जिनको उन्हें शिष्य बनाया था, और उनके शिष्यों पर भी इनकी कृपा थी। जैसे भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी, जिनको जिन्होंने प्रभुपाद जी को संन्यास दिया था, जब ये जाते थे उनको मिलने के लिए, तब उनको मिलते थे वो, बाकी किसी के लिए दरवाजा खोलते नहीं थे, लेकिन ठाकुर भक्ति सिद्धांत जी और उनके शिष्यगणों के लिए दरवाजा खोलते थे, उनको संग देते थे। और रोज उस अपने टट्टी पेशाब वाले जगह से निकल कर जलांगी पार करते हुए ठाकुर भक्ति विनोद के आश्रम में सत्संग करने को जाया करते थे। ऐसे उनका विचित्र वैराग्य जीवन था। ऐसे संत लोग बहुत दुर्लभ होते हैं। तो नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्ति विप्रलंब रसामोदे पादाम बुजायते नमः। भगवान के विरह के अति उत्कट रस का उन्होंने अनुभव किया है। तो इनकी भजन कुटी भी कोलद्वीप में है, उनको प्रणाम करते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर एक सुंदर स्थान है, इसका नाम है समुद्रगढ़। अभी समुद्रगढ़ की क्या विशेषता है, यहाँ पर एक समुद्रसेन नाम का राजा था, और उस समय पांडव दिग्विजय करने के लिए निकले थे, तो भीमसेन इस दिशा में निकले थे। तो भीमसेन ने इस दिशा में क्या उनका था कि चार दिशा में चार भाई निकले थे, और चार दिशा में दिग्विजय यानी दिशाओं पर विजय प्राप्त करने के पश्चात राजसु यज्ञ होने वाला था। तो भीमसेन यहाँ पर आए और भीमसेन ने समुद्रगढ़ पर आक्रमण किया समुद्रसेन के ऊपर। समुद्रसेन कृष्ण के बड़े भक्त थे, और कृष्ण के बड़े भक्त थे वो, और वो जानते थे कि भीमसेन भी कृष्ण के बड़े भक्त हैं। तो उनको भीमसेन के साथ युद्ध करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन उनको कृष्ण के दर्शन करने की इच्छा थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं ऐसा तीव्र युद्ध करूंगा ना, भीमसेन को परास्त होने के लिए मजबूर करूंगा, फिर भीमसेन को परास्त होने से बचने के लिए कृष्ण आएंगे। जैसे भीष्मदेव ने इतना तीव्र युद्ध किया अर्जुन के खिलाफ, अर्जुन को मानो परास्त कर दिया, तो कृष्ण ऐसे उकस गए पूरे, एकदम उत्साहित होकर उन्होंने क्रोधित होकर भीष्म के ऊपर आक्रमण किया। यानी कि भीष्मदेव ने ऐसे युद्ध किया कि उन्होंने कृष्ण को शस्त्र उठाने के लिए विवश कर दिया। तो इन्होंने सोचा कि मैं ऐसे युद्ध करूंगा कि भीम को बचाने के लिए, कृष्ण को प्रकट होने के लिए विवश करूंगा मैं। तो घनघोर युद्ध किया न चाहते हुए भी, और ऐसा युद्ध किया कि भीम परास्त होने लगे। उसमें भीम ने आक्रोश किया, हे कृष्ण, हे भगवान, मुझे बचाइए, मुझे पराजित होने के लिए होने से बचाइए। तो उस समय अदृश्य रूप में श्री कृष्ण प्रकट हुए, भीमसेन को दिखाई नहीं पड़े। जैसे ही भीम के पक्ष से कृष्ण ने दर्शन दिया, अचानक घनघोर युद्ध करने वाले समुद्रसेन जो है वो दंडवत कर दिया उन्होंने। तो भीमसेन को बड़ा आश्चर्य हो गया, अरे अचानक इतना युद्ध करने वाला व्यक्ति दंडवत क्यों कर रहा है। लेकिन भी समुद्र सेन की इच्छा के अनुसार भगवान ने उनको दर्शन दिया। भगवान का दर्शन का इच्छा पूर्ण होते ही समुद्र सेन ने शरणागति स्वीकार ली, भीमसेन को घर पे बुलाया, भोजन कराया और कहा कि हम आपके सेवक हैं और आज यज्ञ के लिए कोई योजना नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये समुद्र सेन का राज्य जो है वो भी कोलद्वीप में है। फिर हम चलते हैं चंपाहाटी में। ये स्लाइड शो यहाँ खत्म समाप्त करके अभी अगले स्लाइड शो में जाते हैं। वो कहाँ गया? चंपाहाटी। ये चंपाहाटी जो है, अरे ये वापस कैसे आ गया? एक मिनट ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तभी हम चंपाहाटी जो कोलद्वीप में ही है उसका दर्शन करेंगे। चंपाहाटी यानी उस समय चंपा के उस इस द्वीप में, इस विभाग में चंपा फूलों का एक वन था, बहुत सुंदर वन था। और चंपाहाटी की विशेषता यह है कि चंपाहाटी में चंपकलता सखी का ये वन माना गया है। इसमें चंपा के फूल खिला करते थे। चंपकलता देवी स्वयं अपने हाथों से चंपा के फूल लेकर उसकी मालाएं बनाकर राधा कृष्ण को अर्पण करती थी, उनका नित्य लीला है। और नवद्वीप धाम में महात्म्य का जो किताब है, नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को बताते हैं, देखो जीव ये इस समय एक समय पर यहाँ पर चंपा का वन हुआ करता था। और ये नित्यानंद प्रभु बता रहे हैं जीव गोस्वामी को कि ये चंपा का वन जो है ये वृंदावन के खदीर वन से अभिन्न है, यानी कि वृंदावन का खदीर वन जो है यहाँ प्रकट हुआ है। जब कलयुग आगे बढ़ेगा, बढ़ा तो उस समय ये चंपा का जो वन था ये चंपा का मार्केट बन गया, इसलिए चंपा हाटी कहा गया। हाटी का मतलब क्या है? बाजार। तो चंपा के फूल बिकने का ये बाजार बन गया। और नित्यानंद प्रभु और भी बताते हैं कि ये चंपाहाटी जो है ये द्वारकापुरी और गंगा सागर भी यहाँ प्रकट हुए हैं। नवद्वीप धाम में कोलद्वीप में एक तो गोवर्धन प्रकट हुआ है कोलिया पहाड़ के रूप में, जो गोवर्धन से अभिन्न है, और साथ साथ गंगा सागर और द्वारका भी यहाँ प्रकट हुए हैं और खदीर वन भी यहाँ प्रकट हुआ है। तो खदीर वन की थोड़ी संक्षेप में कथा करना बहुत आवश्यक है क्योंकि खदीर वन यहाँ प्रकट है। खदीर वन ये उपनंद बाबा का खिरक, उपनंद बाबा का वन है ये। उपनंद का यहाँ पर जलाशय था, उपनंद का गाय यहाँ पर चरती थी, कत्था के वृक्ष थे, इसलिए उनको खदीर यानी कत्था, जो पान खाने के बाद लाल रंग का निर्माण होता है ना, उसको कत्था कहते हैं। और कत्था को संस्कृत में खदीर कहते हैं आयुर्वेद में, और खदीर आदि वटी यानी कंठ के लिए बहुत ही उपकारी है वो। तो ये खदीर के पेड़ वहाँ हुआ करते थे, इसलिए उसको खदीर वन कहा गया है। लीला ये हुई है कि वहाँ पर जो बकासुर था वो आया था। जब ये खदीर वन जो है ये कृष्ण की बाल लीलाओं की स्थली है। बाल लीलाओं यानी बाल लीला में दो विभाग है, एक बाल लीला है जिसमें वत्सपाल लीलाएं भगवान ने की है और एक बाल लीला है जिसमें उन्होंने गोपाल लीला लिखी है। तो एक साल की उम्र से 5 साल की उम्र तक उन्होंने बछड़ों को चराया है तो उनको वत्सपाल लीला कहा गया है। 5 साल के बाद में उन्होंने बड़ी गायों को चराया है तो गोपाल लीला किया है गोपाष्टमी के बाद में। तो खदीर वन जो है वो भगवान की वत्सपाल के लीलाओं के अंतर्गत लीला किया हुआ स्थान है। तो जब ग्वाल बाल वहाँ पर कृष्ण अपने बछड़ों को लेकर आए, उनको जल पिलाया तो देखा तो बहुत बड़ा एक सफ़ेद रंग का बक यानी बगुला वहाँ पर बैठा हुआ था, जिसका सर जो है वो वज्र के समान कठिन था और वो बादलों में था और उसका विशाल पर्वतमय शरीर जो है वो वहाँ पर उस माधव सरोवर के किनारे पे वो विराजमान था। सबको देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, सोच ही रहे थे ये कहाँ कैसे आ गया क्यों आया। उतने में उसने मुंह खोला और कृष्ण को निगल लिया। वो विचार ही कर रहे थे कौन है क्या है, आश्चर्य में उतने में कृष्ण को निगल लिया उसने। तो कृष्ण को निगल लेने के बाद में सब लोग बड़े दुखी हो गए और देवता लोग एकदम विफलता में आ गए। उन्होंने कहा अरे हमारे भगवान ही खत्म हो गए, अभी हमको अंतिम युद्ध करना है, डू और डाई, हाँ या तो मरो या तो युद्ध करो। ऐसे करके ब्रह्मा जी आए, उनका ब्रह्म दंड टूट गया, इसको कुछ नहीं हुआ। शिव जी आए, त्रिशूल मारा, एक पंख कट गया, कुछ नहीं हुआ। इंद्र आए, वज्र मारा, वज्र टूट गया, कुछ नहीं हुआ। यम आए, यमदंड टूट गया, इसको कुछ नहीं, दो घड़ी तक यानी 48 मिनट तक मूर्छित रहा, कुछ नहीं हुआ। यमदंड को पता है आपको, यमदंड क्या होता है? यमदंड से कोई नहीं बचता है। रावण को भी मारने वाले थे यमराज, तो ब्रह्मा जी आए, बोले इनका वध जो है राम जी के हाथ में होना है, आपको नहीं मारना है। तो विजयी होते होते पराजय स्वीकार करके यमराज चले गए थे, ऐसा यमदंड है ये। और फिर वो रावण ने सब जगह बखान किया, यमराज को भी परास्त किया मैंने, यम भी मुझसे हार गया है। हाँ, ऐसे बहुत बखान करते थे अपने, त्रिलोक विजयी रावण, यमराज को भी जिसने वश कर दिया, ऐसे बोलते थे। लेकिन वो जानते नहीं थे कि ब्रह्मा जी ने गुप्त रूप में आकर यमराज को बताया था कि तुम चले जाओ यहां से। तो वो यमदंड जिसके आगे कोई खड़ा नहीं रह सकता है, जब यमदंड उठता है ना तो आदमी को मर जाना पड़ता है। वो यमदंड टूट गया और इस यमदंड के प्रभाव से 48 मिनट तक ये बेहोश रहा, फिर होश में आया। उसका वायु आया, वायु से केवल 2 फीट आगे उड़ा और उधर ही रह गया। जब वायु आता है ना झंझावात, तो पूरे भवन के भवन आकाश में उड़ जाते हैं, तो इसको कुछ नहीं हुआ। फिर अग्नि आया, अग्नियास्त्र फेंका, अग्नियास्त्र फेंकने से प्रलय की अग्नि निर्माण होती है, इसके खाली रोए जल गए, बस कुछ नहीं हुआ उसको आगे। फिर वो तलवार लेकर आए स्कंद, उसके पैर काट दिए लेकिन मरा नहीं है। फिर चंद्रमा आए निहारे का अस्त्र लेकर, यानी क्या, बर्फ बनने का अस्त्र होता है वो, फ्रीजिंग। हाँ, एक होता है अग्नि अस्त्र, एक होता है निहारे का अस्त्र सोमदेव के पास में। इससे क्या हुआ, एक घड़ी तक ऐसा मुरझा रहा, फिर तितला बौखलाते हुए जग गया। फिर भद्रकाली आई और उसने अपने तलवार से इस पर आघात किया, एक और पांख कट गई उसकी। फिर स्कंद आए शक्ति लेकर, शक्ति का प्रभाव किया, फिर थोड़ा देर बेहोश रहा। लेकिन इनके सारे अस्त्रों का, महान महान अस्त्रों का प्रभाव होने के बाद भी बकासुर को मृत्यु नहीं आई। सबको आश्चर्य होता रहा, मरता क्यों नहीं है, इतने महान महान देवता अपना महान महान अस्त्र लेकर, श्रेष्ठ अस्त्र लेकर उस पर प्रहार कर रहे हैं। तो सुनने वाले जो थे ना वो भावलाश्व थे, और कहने वाले नारद मुनि थे, इस कथा को बता रहे हैं गर्ग संहिता में। तो मरा क्यों नहीं ये, तो एक कहानी बताते हैं उसको कि ये पुराने जन्म में ना वो था हयग्रीव नाम के राक्षस का पुत्र उत्कल था। ये हयग्रीव नाम के राक्षस का पुत्र था। हयग्रीव ने ऐसा वरदान मांगा था कि मेरा वध जो है वो मेरे जैसा जो हो वही कर सकता है, यानी उसको पता था कि सर घोड़े का और शरीर मनुष्य का ऐसी योनि ब्रह्मा जी ने बनाई नहीं है। तो ये वरदान प्राप्त करके शरीर प्राप्त किया था। वो क्या कहते हैं कि ऐसे मैं वरदान मांगूंगा तो ऐसे कोई योनि है ही नहीं, तो मेरा वध कैसे होगा, मैं तो अमर हो जाऊंगा। तो भगवान ने फिर वैसा अवतार लिया हयग्रीव का और ये राक्षस का वध कर दिया। तो वो राक्षस का पुत्र था ये उत्कल, और ये उत्कल जो था वो इतना शक्तिशाली था, इतना सिद्ध था पुरुष, तपस्या करके 100 वर्ष तक उसने देवताओं पर राज्य किया, देवताओं को गुफा में भेज दिया डरा धमका के। 100 वर्ष तक स्वर्ग लोकों पर राज्य किया उसने। बड़ा सुंदर देखने में था, बड़ा सिद्ध था, बड़ा शक्तिशाली था, प्रभावी था, तो वास्तविक घमंड भी था उसको। तो ये जाजली मुनि के आश्रम में आया, और जाजली मुनि का ऐसा प्रभाव था कि जाजली मुनि जहाँ आश्रम बनाया था वहाँ सिंह भी आकर हाथी को गले मिलते थे, शेर आकर हिरण को गले मिलते थे, ऐसा मित्रता का भाव था, ऐसा वातावरण था जाजली मुनि के केवल होने से। तो ऐसे जाजली मुनि के आश्रम में ये आया उत्कल, और ऐसे घमंड में एक तालाब के किनारे बैठ गया। तालाब में तो मछलियाँ थी, बड़े प्रेम से रहती थी, तो इसने अपने आप में एक मुरली थी वो डुबाई। किधर डुबाई, वो सरोवर में डुबाई, कुछ मछलियाँ कुतूहल से उसके अंदर आई, आती उसने टक करके मुंह में डाल दिया उसको, फिर डुबाई, फिर कुछ मछलियाँ आई कुतूहल के रूप में, फिर मुंह में डाल दिया, फिर खा लिया उसको। तो जाजली मुनि को पता चला कि कोई आया है हमारे शांत वातावरण में, कोई हत्या कर रहा है। तो वहाँ पर आए, बोला अरे तुम मछली खाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें, हमारे यहाँ पर नहीं चलता है। तो उनको देखता रहा, फिर मुरली डुबाई, उसमें कुतूहल वश कुछ मछली आई, उनके सामने मुंह डाल दी। अभी तो ऋषि होते हैं, वो जानते हैं घमंड को चूर कैसे करना है। उन्होंने शाप दिया इसको कि तुम मछली खाने की इतनी इच्छा है, जा बगुला बन जा। तो ना इतना सुंदर शरीर का, इतना तेजस्वी शरीर का व्यक्ति वहीं के वहीं बगुला बन गया, उधर के उधर ऑन द स्पॉट। ऐसे नहीं अगले दिन, परसों, 3 दिन के बाद नहीं, ऑन द स्पॉट बगुला बन गया। तो सारा घमंड उतर गया, चूर चूर हो गया, महाराज जी के चरणों में गिर गया, महाराज जी क्षमा कर देना, मैं घमंड में था, मुझे उशाप दे दीजिए। तो जाजली मुनि ने उशाप दे दिया कि द्वापर में वैवस्वत मनु के 28वें द्वापर में जब कृष्ण भगवान आएंगे तो उनके द्वारा तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अभी कृष्ण के हाथों उद्धार होना था और कृष्ण भी शरीर के उसके अंदर थे, इसलिए देवताओं के किसी भी शस्त्र अस्त्र का उस पर प्रभाव नहीं हुआ। अंत में क्या हुआ, ऐसा एक दृश्य निर्माण हुआ कि सारे देवताएं ब्रह्मा विष्णु महेश सभी आकाश में भाग रहे हैं और इनको खदेड़ रहा है सब लोगों को, इंद्र चंद्र वरुण भद्रकाली स्कंद अग्नि वायु चंद्र सभी लोग भाग रहे हैं आकाश में, एक बगुला भगा रहा है सबको। उसके बाद में फिर तब तक कृष्ण शरीर में बैठे शांति से बैठे हैं, आनंद ले रहे हैं। फिर उसके बाद में कृष्ण ने शरीर को बड़ा उष्ण किया, अति उष्ण किया और बढ़ाया, तब इसका गला अवरुद्ध हो गया तो उसने बाहर फेंका कृष्ण को, तो बाहर फेंककर फिर चोट से पकड़ के निगलने का कोशिश करने लगा। फिर भगवान ने उसके पूंछ को पकड़ के उसको जमीन पर पटका, जमीन पर पटका तो फिर तिलमिला के उठा, फिर भगवान ने उसको आकाश में फेंक दिया, कई योजन दूर फेंक दिया, फिर घूम घूम के अपावत जमीन पे आके गिरा, थोड़ा बेहोशा हो गया, फिर उठा, फिर चोंच फैलाकर भगवान को पकड़ने के लिए आने लगा। तो भगवान ने उसके चोंच के एक चोंच पर पांव रखा, दूसरा चोंच को उठा के फाड़ दिया, जैसे कोई लंबा पत्ता होता है ना किसी पेड़ का, ऐसे फाड़ देता है ना, वैसे उन्होंने चीर फाड़ कर दिया उसको और उसका देहांत हो गया और उसकी ज्योति जो है वो भगवान के शरीर में विलीन हो गई और उसको मुक्ति मिली। तो ये खदीरवन की लीला है। तो ये खदीरवन जो है वहाँ पर बकासुर का भगवान ने उद्धार किया है अपनी वत्सपा लीला में, अपने गायों को खदीरवन के जलाशय में खिरक में जलपान कराया है, विश्राम किया है। तो यही खदीरवन जो है यहाँ पर प्रकट हुआ है चंपाहाटी में। आगे क्या हुआ है, चंपाहाटी इस जगह पर जयदेव गोस्वामी की लीला है, बहुत सुंदर लीला है। हमने आपको बताया था जगन्नाथपुरी में कि जयदेव गोस्वामी ब्रह्मचारी बनने के लिए जगन्नाथपुरी गए थे, वहाँ पर पद्मावती के पिताजी भी उनको प्रार्थना कर रहे थे जगन्नाथ जी को कि हमारी कन्या को अच्छा पति दे दो। जगन्नाथ जी ने स्वप्न दिया, उनको कहा कि एक जयदेव ब्रह्मचारी आए हैं, वो तुम्हारी लड़की के लिए योग्य है, उनके पास जाना और कहना हमारी आज्ञा है, मेरी लड़की को स्वीकार करो। उधर जयदेव को स्वप्न दिया कि एक ब्राह्मण आएगा कल अपने पुत्री को लेकर, उसको विवाह में स्वीकार कर लेना। अरे भगवान मैं तो यहाँ पर ब्रह्मचारी बनने के लिए आया हूँ। नहीं नहीं आपके लिए गृहस्थ आश्रम अच्छा है, आप पद्मावती के साथ विवाह करना, बहुत सुंदर भक्त है भगवान मेरी, वो स्वीकार करना उसको। भगवान की आज्ञा मानकर उन्होंने अगले दिन ब्राह्मण आया, पद्मावती को स्वीकार किया, विवाह किया, वहाँ रहने लगे। फिर जगन्नाथ जी ने उनको दोबारा स्वप्न दिया कुछ दिन के बाद और उनको चंपाहाटी भेज दिया नवद्वीप में, कोलद्वीप में। ये कोलद्वीप का बहुत विशेष हिस्सा है चंपाहाटी। तो वहाँ पर आप जानते हैं उन्होंने बैठकर गीत गोविंद लिखा, दशावतार स्तोत्र लिखा, ऐसे सुंदर साक्षात्कारी शास्त्र लिखी। उसका मतलब क्या है, कोई कपोल कल्पना और यमक जोड़ के कविता नहीं लिखी उन्होंने, जो उनको भजन में दर्शन हुए ठाकुर जी के, जो लीलाओं का दर्शन हुआ वो उतारा उन्होंने सब कुछ, और गीत गोविंद जो है उनके साक्षात्कार का दृश्य परिणाम है ग्रंथ रूप में। तो आप जानते हैं मैंने आपको वो कथा बताई थी कि उनको दर्शन हो रहा था कि राधा रानी रूठी हुई है और कृष्ण उसको मना रहे हैं, और कृष्ण मना रहे हैं, राधा रानी मान नहीं रही है, तो कृष्ण जो है अपना मोर मुकुट उनके चरणों पे रखते हैं, फिर भी नहीं मान रही है। और फिर भी नहीं मान रही है तो आगे बहुत लंबी कहानी है। वो पहले वो मुकुट रखते हैं फिर भी नहीं मानती, फिर सर झुकाते हैं फिर भी नहीं मानती है, फिर अश्रु बहाकर चरण धोते हैं फिर भी नहीं मानती है, और फिर उनके चरणों के नीचे जो धूल है उसमें लोटपोट हो जाते हैं। ये सब क्रिया भगवान करते हैं, ये मान मंदिर की लीला है, हमने आपको बरसाने में बताया था। तो ये जो जयदेव गोस्वामी वहां देख रहे हैं तो उनको ये सहन नहीं हुआ, उनको लगा ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे भगवान तो भगवान है, राधा रानी के चरणों में झुक रहे हैं, ये देख तो रहे लेकिन उनको विश्वास नहीं हो रहा था, और मन में एक प्रकार का संघर्ष चल रहा था उनके, कैसे कैसे हो सकता है। तो बड़ा उनका सर जो है वो बहुत त्रस्त हो गया, उनको समझ में नहीं आया, तो बोले थोड़ा सा विश्राम लेते हैं। पद्मावती का, पद्मावती थोड़ा भोजन तैयार करना, मैं भी जरा गंगा में स्नान करके ठंडा होके आता हूँ, जरा मेरा भाई मस्तिष्क जो है वो ठंडा हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो गए गंगा जी में स्नान करने, गए कुछ ही दौर में लौट के आए, कुछ ही देर में, मतलब एक अंदाज होता है ना कि भाई आदमी गया गंगा जी में तो कपड़े उतारेगा, स्नान करेगा, अर्घ्य अर्पण करेगा, प्रार्थना करेगा, ध्यान करेगा, दोबारा कपड़े पहनेगा, फिर आएगा, एक समय का अंदाज है ना, कुछ एक घंटा लगेगा, डेढ़ घंटा लगेगा, कुछ भी लगेगा, और त्रस्त भी है तो बहुत देर बैठेंगे, ध्यान करेंगे, दिमाग शांत करेंगे। ये तो ऐसे गए और आए, मतलब पद्मावती भोजन तैयार है ना, भूख लग रही है बहुत, हाँ तैयार ही, आप दो मिनट रुको। उतने में वो अंदर चले गए, अपने कमरे में गए, जहाँ पर उन्होंने वो गीत वहाँ पर आधा छोड़ दिया था, वो आगे लिख नहीं पाए कि कृष्ण भगवान राधा रानी के चरणों में अपने सर को झुका रहे हैं। वो जो काव्य था आधा रखा था, आगे का लिख नहीं पाए थे, उसको पूरा किया उन्होंने, पूरा लिखा कि कृष्ण भगवान शरीर शीश को झुकाते हैं, मुकुट झुकाते हैं, अश्रु से चरण धोते हैं, रोटपोट हो जाए, सब कुछ लिखा, और आए बाहर, बोले पद्मावती भोजन लगा दो। पद्मावती ने बड़े प्रेम से भोजन लगाया, बड़े प्रेम से भोजन किया, बोले अभी जाके आता हूँ बाहर, और गए निकल के निकल के गए तो कुछ ही देरों में वापस लौट के आए। बोले पद्मावती बड़ी जोर की भूख लग रही है, भोजन लगाओ। तो पद्मावती का आश्चर्य हुआ, स्वामी आप तो अभी अभी आए थे। अच्छा मैं कभी आया था, मैं तो बहुत देर से गंगा जी में बैठा हूँ, बहुत परेशान हो गया था मैं, थोड़ा दिमाग को शांत करने के लिए बहुत देर मैंने वहाँ पर स्नान किया, बहुत देर तक मैंने चिंतन किया, थोड़ा अभी अच्छा लग रहा है, अभी भूख लग रही है, इसलिए लौट के आया मैं, बहुत देर से मैं जब से गया तब से गंगा जी में बैठा हूँ। तो स्वामी जी क्या क्या कह रहे हैं आप? तो वो कहते नहीं आप आए थे, भोजन किया। अच्छा बताओ क्या क्या किया मैंने? आप आए, मैं भोजन परोस रही थी तभी आप कहा कि मैं आता हूँ, अंदर गए आप, आपने कुछ लिखा अंदर जाके, फिर आए बाहर आप, फिर पेट भर के भोजन किया। तो जयदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अंदर गया, ठीक है अंदर जाके देखते हैं तो क्या है। उन्होंने जहाँ पर कविता छोड़ी थी अपने हस्ताक्षर में, उसके आगे सुंदर मोतियों जैसे हस्ताक्षर में, जो उनके हस्ताक्षर नहीं है, सुंदर मोतियों जैसे हस्ताक्षर में वो कविता को पूर्ण किया था, जिसमें वो लिख रहे हैं कि ठाकुर जी क्या क्या कर रहे हैं। तब जाकर उनको अनुभूति हुई, अरे साक्षात माधव जी यहाँ प्रकट हुए हैं, साक्षात कृष्ण प्रकट हुए हैं, और जो मुझे लिखना मुमकिन नहीं था वो ठाकुर जी नम्रता के कारण यहाँ पर आकर लिखा, और उनको कोई संकोच नहीं हुआ कि मैं राधा रानी के चरणों पर झुकता हूँ, ये बताने में लिखने में कोई संकोच नहीं हुआ, और जयदेव जी को यकी विश्वास दिलाने के लिए वो स्वयं आए, और ये चार पंक्तियां जो है वो स्वयं कृष्ण ने लिखी है, वो गीत गोविंद की चार पंक्तियां कृष्ण ने लिखी है, जयदेव जी नहीं लिखी है। ये अनुभूति जयदेव जी को हुई है, जयदेव जी भाव विभोर हो गए, बोले पद्मावती तुम कितनी भाग्यवान है, साक्षात कृष्ण साक्षात माधव जी तुम्हारे घर पे आए, तुम्हारे हाथ का भोजन प्राप्त किया उन्होंने, तुमने दर्शन किया उनका। तो पद्मावती भी बेहोश हो गई ये सुनकर, दोनों बेहोश हो गए। ऐसे लीला चंपाहाटी में उनके घर पे हुई थी, और चंपाहाटी में जब भी वो आए थे ना पहले, तो उन्होंने दशावतार सूत्र लिखा सबसे पहले, तो वहाँ का राजा था लक्ष्मण सेन, उसके पास पहुँचा वो, तो राजा को लगा अरे इतने बड़े महात्मा वो जंगल में क्यों रह रहे हैं। वो आए उनको बुलाने के लिए, महाराज जी आप यहाँ क्यों रह रहे हो, हमारे महल में रहो, वहाँ पर आपको जो लिखना है सब सुविधा मिलेगी आपको, वहाँ लिखो आप सबको जो लिखना है। तो उन्होंने कहा, उनको कहा परीक्षा के रूप में कहा, देखो मैं तो बाबा हूँ, मैं किसी राजा वाजा से मिलता नहीं हूँ, दोबारा आओगे ना मैं यहाँ से छोड़ के चला जाऊँगा। तो अगली बार राजा जो है ना वो एक सामान्य वैष्णव बनकर आया और चरणों में गिरा। उन्होंने कहा महाराज जी आप मेरे महल में मत आइए, कम से कम यहाँ पर आपके लिए एक अच्छा कुटी बनाने के लिए आज्ञा दीजिए। तो राजा का नम्र भाव देखकर राजा के परीक्षा में, जयदेव जी के परीक्षा में वो पास हो गया राजा। तो लक्ष्मण देव ने उनसे दीक्षा ग्रहण की, शिष्य बने उनके जयदेव जी के, और गुरु जी से आज्ञा मांगी उन्होंने कि कृपा करके मुझे कम से कम यहाँ जंगल में आपके लिए एक अच्छी कुटी बनाने का आदेश दीजिए। तो उन्होंने स्वीकार किया, और चंपाहाटी में उन्होंने लक्ष्मण सेन ने उनके लिए बहुत सुंदर कुटिया बनाई, और वहाँ पर बैठकर आगे का भजन किया, और बार बार फिर वैष्णव का सूती वस्त्र पहनकर राजा वहाँ पर आकर सत्संग किया करते थे। इसी वन में जयदेव गोस्वामी ने चंपा के फूलों को बिन बिन कर पद्मावती ने और जयदेव जी ने राधा माधव की सेवा की, अपने अपने पूजित विग्रह की सेवा की। तो साक्षात राधा माधव ने उनको दर्शन दिया था और गीत गोविंद लिखने का आदेश दिया था। आगे जाकर ये तो बहुत ही सातवीं सदी की कहानी है, चैतन्य महाप्रभु तो अभी आना बाकी है, बहुत समय है उनके लिए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने भी उनको दर्शन दिया उस समय पर, जिनको आगे बहुत सदियों के बाद में आना है, लेकिन प्रसन्न होकर उनकी भक्ति और देखकर उन्होंने उनको वहाँ पर दर्शन दिया और कहा कि आप पुरी चले जाओ। तो उस समय जयदेव जी को बहुत दुख हुआ, उनको लगा कि अरे मुझे पुरी क्यों भेज रहे हैं, ये इतना सुंदर नवद्वीप धाम, दिव्य धाम क्यों छुड़ा रहे हैं मुझे। तो कहते हैं मैं, महाप्रभु जी कहते हैं मैं और जगन्नाथ जी भिन्न नहीं है, मैं जगन्नाथ के रूप में तुम्हारा गीत गोविंद सुनूंगा और जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आऊंगा इस रूप में तभी भी सुनूंगा, आप चिंता मत करना, आप चले जाओ। तो कहते हैं कि पीछे मुड़ मुड़ के अनंत बार देखते हुए बड़े भारी हृदय से वो छोड़कर जगन्नाथपुरी चले गए और जगन्नाथपुरी को उन्होंने जाकर फिर जगन्नाथ जी को गीत गोविंद सुनाया। ऐसे हमारे जयदेव जी राधा माधव जी के पूजन करने वाले उन्होंने चंपाहाटी में निवास किया। ये जो मंदिर आपको दिखाई पड़ रहा है ये गौर गदाधर का मंदिर है। हाँ देखिए अभी इसमें कैसा है, एक कमल का सखी थी, हमारे ठाकुर भक्तिविनय जी कौन है, कमल मंजिरी के अवतार हैं, ये कमल का सखी अलग है। तो ये कमल का सखी जो है ब्राह्मण के रूप में सत्ययुग में ब्राह्मण के रूप में अवतार लिया था और इस वन में राधा गोविंद जी की पूजा करते था। वो ब्राह्मण था तो कमल का सखी का अवतार, लेकिन राधा गोविंद की मूर्ति की पूजा करता था, चंपा के फूलों की माला बनाकर उनको अर्पण करता था। तो राधा गोविंद जी प्रसन्न हो गए और उनको गौर सुंदर के रूप में दर्शन दिया उन्होंने, इस कमल का सखी के अवतार वाले ब्राह्मण को गौर सुंदर जी के रूप में दर्शन दिया। उनका सुंदर बहुत ही ताज़े चंपा के फल के जरा फूल की तरह उनका तेज था, उसमें दर्शन दिया और बताया उनको कि इसी भाव में मैं कलयुग में आने वाला हूँ। तो कमल का सखी को उस समय जब अभी बहुत समय था महाप्रभु की लीला में प्रवेश होने के लिए, लेकिन उस समय महाप्रभु ने अपने भक्तों के संग में उनको कीर्तन का दर्शन दिलाया, दिव्य दर्शन दिलाया। तो उसके बाद में उनको वरदान दिया कि जब मैं कलयुग में आऊंगा तब आप भी आओगे, अभी तो मैं आपको एक झलक दिखा रहा हूं, लेकिन आप भी जन्म लेकर आओगे गदाधर के छोटे भाई के रूप में, गदाधर पंडित के छोटे भाई के रूप में आप बनकर आओगे, आपका नाम होगा द्विजवाणीनाथ। तो ये द्विजवाणीनाथ के रूप में ये कमल का सखी जो है वो कलयुग में आई महाप्रभु के अवतार के समय और उन्होंने महाप्रभु के कीर्तन का आनंद लिया और इस मंदिर में वो गौर गदाधर की मूर्तियों की सेवा भी करते थे। गौर गदाधर दोनों अंतर्धान होने के पश्चात भी द्विजवाणीनाथ रहे और इस मंदिर में उन्होंने, देखिए ये हमारी यात्रा यहाँ पर, हरे कृष्णा आपको ये स्लाइड दिखाई पड़ रहा है, ओके दोबारा दिखाता हूँ। अभी दिखाई पड़ रहा है स्लाइड, ओके तो यही मंदिर है, देखो दोबारा दिखाता हूँ आपको, इसी मंदिर में हम प्रवेश कर रहे हैं, एक साइड से प्रवेश कर रहे हैं, दूसरे साइड से प्रवेश कर रहे हैं। तो अंदर जाएंगे तो आपको ये दर्शन होगा गौर गदाधर, यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित का दर्शन है। महाप्रभु के अंतर्धान होने के पश्चात, गदाधर जी के अंतर्धान होने के पश्चात भी यहाँ पर नवद्वीप में, वो तो दोनों अंतर्धान हो गए जगन्नाथपुरी में ना, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर उनका द्विजवाणीनाथ ने इसी मंदिर में पुजारी के रूप में सेवा किया और द्विजवाणीनाथ के पश्चात उनके वंशज जो है वो भी यहाँ पर पुजारी के रूप में सेवा करते हैं। तो आप गौर गदाधर जी को प्रणाम कीजिए। और ये गौर गदाधर जी जो मंदिर है वो ठाकुर भक्ति सिद्धांत ने बनाया था और ये सुंदर मूर्तियों की स्थापना की द्विजवाणीनाथ के सेवा के याद में, और द्विजवाणीनाथ जो गदाधर पंडित के छोटे भाई थे इन्होंने इन मूर्तियों को स्थापन किया था और इनको 500 वर्ष से पुरानी ये मूर्तियां हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो उसके आगे और एक स्थान आता है विद्यानगर। विद्यानगर की विशेषता क्या है, विद्यानगर में हमारे सार्वभौम भट्टाचार्य जी का जन्म हुआ था। विद्यानगर में बृहस्पति के अवतार सार्वभौम भट्टाचार्य अवतरित हुए थे और इसी विद्यानगर में मत्स्य अवतार ने यहाँ पर वेद लाए थे। भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं उन सबका बड़ी लिस्ट है, अभी यहाँ पर बताना मुमकिन नहीं है। वो सारे जितने भगवान के अवतार हुए थे वो सब यहाँ पर आए थे। तो विद्यानगर में ठाकुर सार्वभौम भट्टाचार्य, उनको मिथिला में जाकर एक बड़े पंडित से विद्या सीखने की इच्छा थी। इतने तल्लक बुद्धि के थे वो, तो वो मिथिला के जो पंडित थे उनकी ऐसी धारणा थी कि मेरे पास जो पढ़ने को आएगा कोई नोट्स नहीं दूंगा, कुछ लिखित दूंगा नहीं, खाली कहूंगा आपको केवल याद रखना है, जो भी करना है अपने हाथ से लिखना। तो इतने बुद्धिमान थे, कोई इतनी तेज बुद्धि रखता नहीं था। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य मिथिला गए, उनके पास जितना समय निवास किया, जो भी सुना कंठस्थ किया और वो अपने हाथ से आकर विद्यानगर में उतारा और विद्यानगर में सारे शास्त्रों को उन्होंने प्रकट किया जो सुना था। तो कहते हैं कि जब सार्वभौम भट्टाचार्य थे तो विश्व का सबसे बड़ा ज्ञान का पीठ, विद्यापीठ जो था वो विद्यानगर में था। चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए और चैतन्य महाप्रभु ने, वो होता ना टाक, टाक में लिखते थे ना पहले तो पेन नहीं था, स्याही नहीं थी, तो वो ऐसे टाक बनाकर लिखते थे। वो टाक को लेकर उन्होंने जमीन पर गाड़ा और वो पेंसिल का वृक्ष बना दिया। ऐसा एक जगह है वहाँ पर सार्वभौम के मंदिर के सामने, बहुत सारे पेड़ हैं। वो आज तक कोई बॉटनी वनस्पति शास्त्र का जो प्रोफेसर है ना, उन्होंने बहुत प्रयास किया, इस पेड़ की कहीं गणना नहीं है बॉटनी के रूप में। दो दो नाम आते हैं ना, वो इंग्लिश में नाम आते हैं, हमको कैसे बताएं आपको, हाँ लैटिन रूप में आते हैं। तो वो ये पेड़ की आज तक बायोलॉजी बॉटनी के अंदर वर्गीकरण नहीं हुआ है, गणना नहीं हुई है। ये पेंसिल से बने हुए पेड़ हैं, बहुत सारे पेड़ हैं वहाँ पर। ये चमत्कार महाप्रभु चैतन्य ने विद्यानगर में जाके किया था। उसके बाद में विद्यानगर गौड़िया मठ में ये गौर निताय का दर्शन है। ये टेम्पल भी भक्ति सदान सरस्वती महाराज ने स्थापन किया था। इसमें गौर निताय की सुंदर मूर्तियाँ हैं, जो विद्या वाचस्पति, जो सार्वभौम भट्टाचार्य के छोटे भाई थे, इन्होंने इन मूर्तियों की सेवा की थी विद्यानगर में, तो इनको भी प्रणाम करते हैं। और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य के मंदिर में जाते हैं, सार्वभौम के मठ में प्रवेश करते हैं, जिसमें राधा कृष्ण और गौर निताय की मूर्तियां हैं, इनका भी दर्शन करते हैं। सार्वभौम जी तब तक विद्यानगर में रहे जब तक जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु का जाने का समय नहीं आया। चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर भी आए, लेकिन जब जगन्नाथपुरी गए उसके पहले फिर ये जगन्नाथपुरी गए और वहाँ जाकर राजा प्रताप रुद्र का राजगुरु का पद स्वीकार किया उन्होंने, और भगवान के अंत्यलीला में इन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया है। सबसे पहले ठाकुर जी ने, चैतन्य महाप्रभु ने उनका जो मायावाद का मंतव्य था उसको डिफीट कर दिया उन्होंने, और सार्वभौम जी का उद्धार कर दिया, उनको एक प्रेमी भक्त बना दिया। क्या फर्क पड़ा उससे, पहले बड़े नियम से चलते थे ये मायावादी लोग जो थे ना, बड़े नियम पालन करते हैं, सख्त नियम पालन करते हैं। मुंह धोए बिना, स्नान किए बिना, गायत्री किए बिना, मंत्र बोले बिना, अग्निहोत्र किए बिना कुछ खाते नहीं थे। तो जब महाप्रभु की कृपा हुई, उनका उद्धार हुआ, तो एक दिन सवेरे 4:30 बजे चैतन्य महाप्रभु ना महाप्रसाद लेकर घर पहुंचे। तभी तो ये विश्राम कर रहे थे, दरवाजा खटखटाया, महाप्रभु जी के दरवाजा खटखटाने से सार्वभौम जी जग गए, ऐसे बिस्तर से उठ के दरवाजा खोला और महाप्रभु ने उनको महाप्रसाद दिया। तो महाप्रसाद देते ही इन्होंने तुरंत मुंह में डाल दिया। तो महाप्रभु प्रश्न पूछते, अरे सार्वभौम जी आप इतने बड़े पंडित हैं, बिल्कुल बिना मुंह धोए गायत्री की आप कैसे प्रसाद पाते हैं? तो कहते जिनके ऊपर आपकी कृपा हुई है उनकी यही अवस्था होती है। हाँ, वो प्रेम से सब कार्य करते हैं। और प्रेम से नियम क्या होता है जगन्नाथपुरी का, जैसे ही जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद हमारे सामने आता है, हम चाहे नहा धोए हुए हो, मुंह का छालन किए हो न हो, और गायत्री मंत्र जप किया हो न हो, कोई समय योग्य अयोग्य हो, आपको तुरंत उस महाप्रसाद का सेवन करना है, नहीं तो अपराध हो जाता है। तो कहते महाप्रभु कहते हैं अभी आप भक्त बन गए हो। वही सार्वभौम इतने बुजुर्ग थे, इतने गंभीर व्यक्ति थे, इंद्रधनुष सरोवर में स्नान करते ना बालक की तरह पानी उछाल रहे थे। तब महाप्रभु कहते हैं दूसरे भक्तों को, देखो देखो इतना बड़ा पंडित राजगुरु बच्चों की तरह खेल रहा है। तो व्यक्ति महाप्रभु को कहता है, देखो देखो जिस पर आपकी कृपा होती है वो बालक बन जाता है। हाँ, भक्ति में एक एक विधान है कि भक्ति में जब हम सिद्ध हो जाते हैं ना तो बालक की तरह बन जाते हैं, यानी निरागस निष्पाप बन जाते हैं। बालक की तरह मतलब क्या, बालक का मन कैसा शुद्ध होता है, पवित्र होता है, उसे कोई कलमश नहीं होता है, कोई वासना नहीं होती है, केवल शुद्ध और निरागस मन होता है, निष्पाप। तो आगे जाकर जैसे हम बुढ़ापे में, क्षमा चाहता हूँ, वैसे भी हमें बचपन से जब हम लोग बचपन में बच्चा रहते हैं, फिर बुजुर्ग बन जाते हैं, फिर जब अति वृद्ध होते हैं तो बालक की तरह बन जाते हैं। हाँ, जल में जाकर खेलते रहते हैं, 90 साल की औरत 90 साल का आदमी जो है ना वो खिलौने खेलते रहते हैं, ऐसे पैसे गिनते रहते हैं, इधर उधर खेलते रहते हैं, एकदम बालक जैसी अवस्था वैसे भी हो जाती है। लेकिन वास्तव रूप में जब भक्ति का परिणाम होने के पश्चात हम बालक बन जाते हैं तो वो निष्पाप हृदय कृष्ण को आकर्षित करता है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु की कृपा होने के पश्चात सार्वभौम भट्टाचार्य ऐसे बालक जैसे बने। फिर आगे जाते, ये वो पेड़ है, अनेक पेड़ों में से एक पेड़ है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने उसको लगाया जमीन पर और वो पेंसिल का वृक्ष बन गया। और ये गौरांग महाप्रभु का चित्रपट है। और देखिए ये सार्वभौम भट्टाचार्य जी है ना, इन्होंने श्री सची सुताष्टकम ये इसका लेखन किया है और एक शतक भी लिखा है महाप्रभु के गौरव में, शतक लिखा है उन्होंने। और बहुत बड़े विद्वान थे ये, बहुत बड़े पंडित थे। तो उनका चित्रपट है, वो लिख रहे हैं, और राधा रानी और कृष्ण के विषय में भी उन्होंने लेखन किया है। और ये वो चित्रपट है जहाँ पर कृष्ण भगवान आए हैं जयदेव जी के घर पे और अपने हाथ से वो गीत गोविंद का श्लोक उन्होंने पूर्ण किया है, पीछे से पद्मावती देख रही है, ये उनका दृश्य है। और ये द्विजवाणीनाथ का चित्रपट है जहाँ पर द्विजवाणीनाथ कमल का सखी जो है महाप्रभु का दर्शन करके कलयुग में उन्होंने गदाधर पंडित के छोटे भाई के रूप में दर्शन किया। इस तरह से हम लोग ने यहाँ पर अभी चंपाहाटी का भी दर्शन, विद्यानगर का दर्शन भी किया। अभी मैं चाहता हूँ कि हमारे पास 20 मिनट है तो हम कोशिश करते कि आपको एक चक्र के कुछ दर्शन किए जाएं तो अच्छा रहेगा। थोड़ा आप कीर्तन कर लीजिए, जरा आप लोग गाइए 2 मिनट के लिए, कीर्तन करो जरा, अच्छा रहेगा। कोई बात नहीं, गाते रहो, जोर से गाते रहो।
हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे,
हरे 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 ह
अगर आपको दिखाई पड़ रहा है तो आप मुझे बताइए, दिखाई पड़ रहा है? स्मिता शेंडे, हाँ वेरी गुड। ये एक चक्र धाम है। देखो नित्यानंद प्रभु की इच्छा थी कि आपको दर्शन कराया जाए, तो उन्होंने समय दिया और हमको पावन भाग्य प्राप्त हुआ कि हम अभी एक चक्र में जा रहे हैं। मायापुर से अभी कम से कम 4.5 से 5 घंटे का रास्ता है। पहले हमारे समय पर जाते थे हम लोग तो 8 घंटा लगते थे पहुंचने के लिए, इतने रास्ता ख़राब थे उधर। लेकिन अभी रास्ते अच्छे हो गए तो 4.5 घंटा में पहुंच जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पहुंचते हैं तो रात में यहाँ पर रहने का इंतज़ाम अभी अभी हुआ है, पहले नहीं था। और उन्होंने एक निर्णय किया था, अभी आप जानते हैं ना कि भक्ति विनोद ठाकुर को दृष्टांत हुआ, अपने घर के फैले माले के गैलरी में खड़े होकर उन्होंने देखा, प्रकाश देखा, दो दर्शन किए, प्रकाश देखा और कीर्तन देखा, उसके बाद में अद्भुत मंदिर का दर्शन किया। तो अद्भुत मंदिर का निर्माण करने का प्रभुपाद जी ने अल्बर्ट फोर्ड यानी कि अम्बरीश प्रभु, जो हेनरी फोर्ड के ग्रैंडसन थे, वो उनके मंदिर में आए। बड़ा ही है, पूरा ही बड़ा ही दिखा रहा हूँ मैं, नहीं दिख रहा ना, कोई बात नहीं, दोबारा दिखाता हूँ। हाँ देखो अभी दिखाई पड़ेगा आपको, अभी दिखाई पड़ा, बड़ा दिखाई पड़ा, बड़ा बड़ा चित्रपट, एक चित्रपट। हाँ तो वो अद्भुत मंदिर बनाने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने अम्बरीश प्रभु को आदेश दिया कि अम्बरीश जी आप अपने जीवन में इस मंदिर को बनाओ। तो इतना बड़ा कार्यक्रम था तो अम्बरीश जी, वो प्रभुपाद जी ने आदेश दिया तो उन्होंने जीवन भर इसी के ऊपर ध्यान किया। और अभी अभी कुछ साल पहले प्रभुपाद जी स्वप्नों में आए उनके, और उन्होंने उनको वो बहुत दिन तक वो जगह ही तय नहीं हो पाई कि किस जगह बनाना है। पीछे 25 एकड़ की जगह थी खेती वाली, उसमें बनाना है कि फिर प्रभुपाद जी स्वप्न में आए, अम्बरीश प्रभु का हाथ पकड़ कर प्रभुपाद जी लेके गए और जगह दिखाई कि यहाँ बनाओ, जहाँ पर गार्डन था पहले, बहुत सुंदर बगीचा था बनाया हुआ, बहुत सुंदर बैठने की जगह थी, हरियाली थी, भागवतम कथा भी होती थी 1500-2000 लोगों के लिए वहाँ पर गौर पूर्णिमा के समय। वो गार्डन को नष्ट करके वहाँ पर मंदिर बनाओ, ऐसे अभी जो मंदिर राधा माधव जी का है उसके बाजू में जो बड़ा भव्य गार्डन था वहीं पर बनाने का आदेश दे दिया। फिर वो सीधे अमेरिका से स्वप्न आया, सीधे फ्लाइट पकड़ के राधा गोपीनाथ मंदिर में आए और परम पूज्य राधानाथ महाराज को स्वप्न बताया। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से आपको उसी जगह पर मंदिर बनाना है, कोई संदेह नहीं है, हाँ वही मंदिर बनाइए। और मंदिर बनाने का काम आरंभ हुआ, आज से 10 साल पहले की बात है। लेकिन पता है ना आपको कि ये बहुत ही विशाल प्रोजेक्ट है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर का। तो अपने 150 करोड़ रुपए देकर उन्होंने काम शुरू करवा दिया और आगे के पैसे इकट्ठा करने के लिए कोशिश करने लगे, तो बहुत सारी बाधाएं आई उसके अंदर। तो फिर भक्तों का विचार मंथन चलता रहा, क्या किया जाए क्या किया जाए। तो ऐसा विचार मन में आया कि नित्यानंद प्रभु के धाम में, एक चक्र धाम में अगर नित्यानंद प्रभु का मंदिर बनाया जाए तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से फिर ये गौरांग महाप्रभु का मंदिर बनेगा। ये भाव से फिर उन्होंने एक चक्र में जगह लिया और मंदिर बनाने का कार्यक्रम आरंभ किया। तो तब जाकर ये मंदिर अभी पूरा हुआ है, एक चक्र में इस्कॉन का बहुत सुंदर मंदिर पूरा हुआ है। पहले कोई रहने की व्यवस्था नहीं थी, जाके सुबह आना है बस, 6 घंटे जाना है, 8 घंटे, 1 घंटा वहाँ रहना है, कैसे भी करके प्रसाद मिला तो ठीक है, नहीं तो वैसे ही लौट के आना है, रास्ता में प्रसाद लेना है, मतलब दिन भर यात्रा करनी है, 1 घंटा वहाँ रहने के लिए, बस ये वहाँ की स्थिति थी। आज स्थिति सुधर गई है, आज हम 4 घंटा में पहुँच सकते हैं, 5-6 घंटा वहाँ बिता सकते हैं, फिर रात को पहुँच के वापस आ सकते हैं। हमारी यात्रा भी ऐसी गई थी वहाँ पर। और परम भाग्य ये रहा कि इतने साल 35 साल तक जाते रहे लेकिन कभी रहने का अवसर नहीं मिला। लेकिन 2015 में जब भी भूकंप हुआ था नेपाल में, तभी नेपाल के भी 50 लोग वहाँ पर आए थे यात्रा में। अधिक मास था 2015 में, और अधिक मास में हमने बारिश के मौसम में यात्रा निकाली थी, उस समय आखिरी स्थान एक चक्र धाम था। तो सबको यात्रियों को विदा किया और हम यात्रा कमेटी लोग 4 लोग वहाँ पर रात को रुके। इतना परम अद्भुत आनंद आया था उस समय कि उसका वर्णन नहीं मैं कर सकता। नित्यानंद प्रभु के धाम, इतना दिव्य धाम है वो जिसमें नित्यानंद प्रभु जन्म लिया। ऐसे कहते हैं जहाँ गंगा नदी नहीं बहती है उसको अपवित्र माना गया है, लेकिन आप देखते हैं कि जहां गंगा नदी नहीं बह रही है, हाँ, इसको गौड़ देश नहीं माना जाता है, गौड़ देश जहां पर गंगा नदी नहीं बहती उसको अपवित्र माना गया है। ऐसे जगह पर नित्यानंद प्रभु ने जन्म लिया, इसका कारण क्या है? जहां सबसे पतित स्थिति है वहां पर पतित पावन के रूप में नित्यानंद प्रभु ने अवतार लिया। वो कैसे है? मोसम पतित पतु प्रभु न पाई बे आर, हाँ, जहां पतित है वहां पर ढूंढ के जाते हैं पतित पावन। तो पतित पावन कहां जाते हैं? जहां पतित है वहां जाते हैं। तो पतित पावन नित्यानंद प्रभु कहां पहुंचे? उधर पहुंचे, एक चक्रधाम में। तो ये एक चक्रधाम का प्रवेश द्वार है, यहां से भक्त लोग प्रवेश कर रहे हैं। देखिए अभी आपको दिखाता हूं, कुछ स्लाइड्स होने बने, मैंने ऐसे आपको फाइल से दिखा रहा हूं, फोल्डर से। ये हमारे इस्कॉन मंदिर का गौर निताई का दर्शन है, बहुत ही सुंदर। जब हम गए थे तभी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन रहने की व्यवस्था थी, मंदिर बन रहा था, पूरा कंस्ट्रक्शन चालू था, बहुत सुंदर। और वहां पर विशेष बात यह, गंगा नहीं बहती है, जमुना बहती है, यमुना जी प्रकट हुए वहां पर। एक गौर निताई मंदिर है, बहुत सुंदर, वहां पर सेवा होती है। और ये मंदिर तभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, अभी पूरा हो गया है कंप्लीटली। ये देखिए, गेस्ट हाउस पूरा हुआ था, मंदिर बनने का बाकी था, अभी मंदिर भी पूरा हो गया है। ये हमारे इस्कॉन का एक चक्र में मंदिर है, बन गया है अभी। और ये जो है, ये नित्यानंद प्रभु का बहुत विशेष मंदिर है वहां पर। इस्कॉन का मंदिर एक जगह पर है, थोड़ा आगे जाएंगे तो नित्यानंद प्रभु का घर है, जहाँ पर नित्यानंद प्रभु, हराई पंडित और पद्मावती देवी, उनके माता पिता का नाम है, उनके साथ में उनका जन्म हुआ था। उनका सूतिका ग्रह भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये उनके सूतिका ग्रह के बगल में उनका मंदिर है, जहाँ पर नित्यानंद प्रभु का दर्शन हो रहा है, अति अति दयालु नित्यानंद प्रभु का दर्शन हो रहा है, देखिए। और ये उनका घर है। ये जो है, ये कहते हैं विश्वरूप की विश्राम स्थली है ये। ये जो पेड़ है, ये विश्वरूप विश्राम तला है, यहाँ पर विश्वरूप जी आके विश्राम करते थे। फिर ये आपको जो दिख रहा है, ये पद्मावती कुंड है। जैसे वहां पर गौर कुंड था ना, उधर अंतरद्वीप में, उधर सच्ची माता अपने पुत्र निमाई को स्नान कराया करती थी, वैसे इस कुंड में निताई को पद्मावती जी स्नान कराया करती थी। आज भी आप जाएंगे ना, ये आपको देखकर ऐसा लगेगा इतना शांत जगह है ये। और वास्तव में आज भी नित्यानंद को छोटे से नन्हे से बालक के रूप में यहाँ पर महसूस करते हैं, इसलिए सब जगह पर हमको ऐसे बताते हैं, कुछ बात नहीं करना है आपको, कीर्तन करने को भी हाल अलाउड नहीं है, क्योंकि बालक सो रहा है, आपके कीर्तन के झांझ के आवाज से बालक जग जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए आज वो जाएंगे, वहां पर प्रवचन करने को अलाउड नहीं है, वहां पर कीर्तन करने को अलाउड नहीं है, इसी भाव से कि कीर्तन के लिए उनको नफरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस क्षेत्र में निताई बालक के रूप में विश्राम कर रहे हैं, तो आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, शांति से आना है, दर्शन करना है, जितना घंटा बैठा है बैठो, प्रार्थना करो, शांति से मन में प्रार्थना करो, कथा वथा करने दूर चले जाके कथा करो, उस विभाग में कहीं भी कथा नहीं कर सकते। इसलिए जहाँ पर भी, यहाँ पर आप जब भी जाएंगे, तो आपको एकदम परम 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 शांति का अनुभव होगा, ऐसा सुंदर स्थान है ये। तो ये पद्मावती कुंड है, देखिए बहुत सुंदर, सभी प्रकार के पवित्र वृक्ष इसके आसपास में है। पद्मावती कुंड के पीछे रहने की व्यवस्था भी है, आश्रम है, गौड़िया मठ है। और ये एक और नया मंदिर वहां बना हुआ है, सुंदर, एक चक्रधाम में। और ये सूतिका गृह है, हाँ, कहते हैं इसी जगह पर शायद षष्ठी मंदिर है, सूतिका गृह नहीं है, ये षष्ठी मंदिर है। नित्यानंद प्रभु का जन्म होने के बाद में छठे दिन पे षष्ठी पूजन किया गया था, तो षष्ठी देवी का शायद ये मंदिर है, मेरे ख्याल से ये सूतिका गृह है। और षष्ठी देवी का मंदिर जो है, ये उनका घर है, नित्यानंद प्रभु के माता पिता का घर है ये। ये तो अभी बनाया गया है, लेकिन ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये जो अवशेष है ना, ये नित्यानंद प्रभु के जो ओरिजिनल घर था उसका अवशेष है ये यहाँ पर उनका महल जो था, घर भी था, उसका ये अवशेष के रूप में कुछ पत्थर बचे हुए हैं, उसके बाद में ये घर बनाया गया है, वो प्रतिकृति है उसकी, उस जगह पर एक घर बनाया गया है। और ये जो है, ये यमुना जी है, थोड़ा आगे जाने के बाद देखिए, ये हम आगे आगे जाएंगे, दर्शन करेंगे अभी। और ये जगन्नाथ जी का दर्शन है, आप खड़े जो है ना, वो जगन्नाथ जी, वो वैसे जगन्नाथ जी नहीं है, ये बंसी बजाने वाले जगन्नाथ जी हैं, देखो लाल लाल आंखें हैं उनकी, और जगन्नाथ दर्शन नीचे गौर निताई खड़े हैं, ये भी यमुना जी का दर्शन है। और ये जो स्थान है, ये नित्यानंद प्रभु के जन्म होने के पश्चात में उनका नाभि जो गियत संस्कार किया था, नाभि कट किया था ना, वो नाभि जो है वो यहाँ पर उसको समाधि दी गई थी। देखिए इस जगह पर नित्यानंद प्रभु की नाभि जन्म होने के पश्चात उनको यहाँ पर समाधि में रखा गया है। और एक यहाँ पर एक बहुत सुंदर और एक विशाल मंदिर बनाया है गौर निताई का। वहाँ पर एक मैं आपको बात बताता हूँ, ऐसा प्रसंग हुआ यहाँ पर। हमने बहुत दिन तक यात्रा की, मैं बहुत कथा करके थक गया था, बहुत जब लोगों को विदा किया नित्यानंद प्रभु के धाम से, सब लोग अपने अपने कोलकाता चले गए, वहाँ से बम्बई चले गए, मैंने वहाँ पर एक दिन विश्राम किया। तो उस दिन शाम को मैं इतना थक गया था मैं, तो मैं ये मंदिर में गया दर्शन करने के लिए। सोचा कि कभी यात्रा लेके आएंगे तो यहाँ रहने की व्यवस्था है कैसा। हम लोग रिसर्च कर रहे थे लेकिन उतनी भी शक्ति नहीं बची थी। तो जब मैं यहाँ पहुँचा तो यहाँ पर संध्या आरती चल रही थी। मैं इतना थक गया था कि मैं बैठ गया जमीन पर, मैं खड़ा नहीं हो सकता था। तो वो जो पुजारी था ना, उसने पूरी आरती की, नीचे आया और मुझे बताया कि भगवान की आरती करते समय जब अग्नि की होती ना आरती, दीपक चलाते ना, वो जिस आरती में होता है दीपक, उस आरती में अगर कोई जमीन पर बैठेगा ना तो सीधे नरक में जाएगा इस जन्म के अंत में। मैंने कहा मैं बहुत थक गया था इसलिए। बोला तो आपकी मर्जी है, बैठे रहो, आपकी इच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा बताना मेरा काम है। तो उस दिन मैं बहुत बड़ा सबक सीखा, मुझे ये पता नहीं था इस बात का कि आरती में कभी भी बैठना नहीं चाहिए। ध्यान रखिए आप, कोई छोटा मंदिर हो, कोई बड़ा मंदिर हो, जब भी दीपक से भगवान की आरती होती है तो आपको खड़े होना है, बैठे रहना नहीं है। जब बैठे रहेंगे तो नरक में जाना पड़ेगा। ये बात मैं इस भव्य मंदिर में सीखी, वहाँ कोई नहीं था, केवल पुजारी अकेले आरती कर रहा था, मैं मेरा एक साथी था और मैं बैठा था, मैं साथी खड़े थे, मैं तुरंत खड़ा हो गया फिर उसके बाद में, और क्षमा मांगी मैंने गौर निताई की। तो ये मंदिर है, वो बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत ही सुंदर, कम से कम 12 फीट की लंबी मूर्ति है ये गौर निताई की, इतनी सुंदर फीचर्स है इनके, बहुत ही सुंदर। और ये वो घर है नित्यानंद प्रभु का, आगे पीछे से दिखाई पड़ रहा है, देखिए। तो सोचा कि आपको फिर नित्यानंद प्रभु का, और भी बहुत अंदर स्थान है इसके, मेरे पास फोटो अभी नहीं है। एक बांका राय का मंदिर है जहाँ पर सुंदर छोटी सी 3 फुट की मूर्ति होगी शायद, काले रंग की, और बंकिम राय कहते हैं उसको। तो कहते हैं नित्यानंद प्रभु उसी मूर्ति में अंतर्धान हो गए थे, ये मूर्ति भी उसी गांव में है। देखता हूँ मिलेगा तो दिखा देता हूँ आपको, लेकिन अब शायद नहीं है उसके अंदर। तो इस प्रकार से कई जगह पर लिखा गया है, हाँ, नित्यानंद प्रभु का जो चरित्र है उसमें लिखा गया है कि नित्यानंद प्रभु को छोड़कर अगर हम गौरांग महाप्रभु की सेवा करते हैं या उनका सेवा करने का विचार करते हैं वो बहुत बड़ा अपराध है, हाँ। और एक और स्थान है अंबिका कालना, जहाँ पर कुछ समय तक नित्यानंद प्रभु, मैंने कहा ना वो सन्यासी के साथ भारत भर गए और उन्होंने भारत भर भ्रमण किया तीर्थ स्थान में, फिर वो सन्यासी निवृत्त हुए, फिर उन्होंने वृंदावन में गए, वहाँ पर नित्यानंद वट यानी श्रृंगार वट में निवास किया। उसके बाद में नंदन आचार्य के घर में गए नवद्वीप में, वहाँ पर उनका चैतन्य महाप्रभु के साथ मुलाकात हुई, और उसके बाद में बहुत दिनों तक वो नवद्वीप में रहे। तभी अकेले थे यानी कि ब्रह्मचारी के रूप में थे, प्रचार कर रहे थे। एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा निताई तुम विवाह कर लो। तो फिर अपने बड़े भाई की आज्ञा है, क्या करें, बड़े भाई मतलब छोटे भाई थे वैसे, लेकिन महाप्रभु चैतन्य ने आदेश दिया। तो ये ना गंगा जी पार करके अंबिका कालना गए और वहाँ पर सूर्यकांत सरकेला नाम के व्यक्ति के पास गए। उनको 2 कन्याएं थी, एक वसुधा और एक जानवा। तो ये जानवा देवी जो है वो रेवती का अवतार है और वारुणी का अवतार जो है वो वसुधा देवी है, दोनों बहनें हैं। और सूर्यकांत को मिले और कहा कि मैं आपकी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है यार, लेकिन आप हो कौन, आपका कुल क्या है, आप कौन से माता पिता कौन है, कौन से वंश के हो, कौन से जाति के हो, कुछ पता नहीं है, तो कैसे हम आपसे अपनी कन्या का विवाह कर दें। तो उन्होंने कहा पता कर लो फिर, आप जो करना है कर लो। तो गाँव में चर्चा हुई बहुत सारी, तो इनके बारे में जानकारी सबको थी। तो फिर वो कुछ दिन गाँव में रहे, उसके बाद में सूर्यकांत सरकेला ने उनको स्वीकार किया कि ठीक है हम विवाह करेंगे। फिर उनको घर लेके आए और घर में बहुत सारे विधि हुई। अब इसमें एक चमत्कार हुआ, जब पहली बार ये एक्सेप्ट करने के बाद में नित्यानंद प्रभु घर पे आए ना उनके, तो घर ये जो थी ना जानवा देवी, इसको ना प्रेम के आवेश में फिट साधे थे, तो वो प्रेम के आवेश में एक बार फिट आके गिरी हुई थी, तभी नित्यानंद प्रभु घर पे आए। जब नित्यानंद प्रभु घर पे आए तो नित्यानंद प्रभु के शरीर के सुगंध जब ही इसके नाक में प्रवेश किया तो तुरंत होश में आ गई, और जब होश में आई तो अपने होने वाले पति यानी होने वाले प्रियतम जिसके लिए वो ध्यान कर रही थी उनका दर्शन करके इतनी शर्मा गई कि अंदर भाग गई वो। बाद में उसको बताया गया कि आपके होने वाले पति है, लेकिन उनको तो हृदय से ये प्रेरणा थी कि ये हमारे पति है। दर्शन करते ही इतने भाव विभोर हो गई जानवा देवी कि शर्मा के अंदर चली गई। फिर सगाई हुई और फिर कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु को पालकी में बिठाकर दुल्हे राजा को 3 दिन तक घुमाया वधू वाली पार्टी ने, वधू पक्ष ने नित्यानंद प्रभु को दूल्हा बनाकर ना 3 दिन तक पालकी में घुमाया, वो विधि था उनका। फिर उसके बाद में उनका विवाह संस्कार हुआ। जानवा देवी का विवाह सूर्यकेला सूर्यकांत सरकेला की कन्या जानवा देवी के साथ विवाह संपन्न हुआ। बहुत दिनों तक तो चलता रहा विवाह। फिर विवाह संपन्न हुआ एक दिन, फिर उसका महाभोज रखा गया। अभी महाभोज में कैसा है, दूल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं, नित्यानंद प्रभु जानवा देवी दुल्हन बनकर सज धज के बैठे, उनका भोजन किया जा रहा है, और वसुधा देवी बड़े प्रेम से भोजन कर रही है, भोजन करा रही है, मतलब आरोग रही है। तो अभी क्या हुआ ना, अभी दो एक हाथ में बर्तन पकड़ा है, एक हाथ में खिला रही है, तो अचानक उसका दुपट्टा जो है ना वो नीचे आता है। तब उसको दुपट्टा अभी ठीक करना है, लेकिन दोनों हाथ बिजी है उसके। तो वो क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु देख रहे हैं उसको कि ये परोस रही है और उसका दुपट्टा गिर रहा है, उसको सीधा भी करना है, अभी क्या करें, वो तो देख रहे हैं उसको। उतने में वसुधा देवी के पीछे से, कंधे से पीछे से दो हाथ निकले, दो हाथ निकले और दो हाथों ने वो खिसकती हुई दुपट्टा को सही किया, गांठ मार दी, जगह पर रख दिया और दो हाथ वापस अदृश्य हो गए। ये दृश्य नित्यानंद प्रभु ने देखा, और नित्यानंद प्रभु ने देखा और तुरंत उसका हाथ पकड़ के उसको पत्नी के रूप में स्वीकार किया, उसके साथ भी विवाह किया। तो नित्यानंद प्रभु जानवा देवी से पहले विवाह कर चुके थे, उस दिन दोबारा विवाह किया वसुधा के साथ में, और दोनों को विवाह करने के पश्चात वो कुछ दिन वहां रुके अंबिका कालना में। अभी अंबिका कालना के बारे में बताता हूँ आपको। विवाह करके फिर उनको लेके गए खड़दाहा, खड़दाहा यानी वो कोलकाता स्टेशन के पास में आप जाएंगे ना तो एयरपोर्ट के आगे वो स्थान है जहाँ पर वो पानी हाटी है, उसके आगे जाएंगे तो खड़दा है। तो खड़दाहा में उन्होंने अपना गृहस्थी बसाई, और जानवा को कोई पुत्र वुत्र नहीं हुआ और वसुधा को पुत्र हुआ। अभी देखो चैतन्य महाप्रभु ने जब नित्यानंद प्रभु को आदेश दिया ना कि आप विवाह करो, तो सहज प्रश्न आएगा ना क्यों, मैं क्यों, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम विवाह करोगे तो तुम्हारे पुत्र के रूप में मैं स्वयं आऊंगा, लेकिन ये रहस्य की बात है, किसी को बताना नहीं आप। तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से नित्यानंद प्रभु के वसुधा के गर्भ से चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया वीरभद्र के रूप में। तो वीरभद्र साक्षात चैतन्य महाप्रभु थे, और वसुधा को बालक हुआ लेकिन उनको बालक नहीं हुआ जानवा देवी को, और यथावकाश नित्यानंद प्रभु अंतर्धान हो गए। फिर जानवा देवी जो है, और फिर वीरभद्र ने बहुत धुआंधार प्रचार किया है, और फिर जानवा देवी जो है वो एक चक्र में गई। जैसे मैंने बताया आपको कि जब भी जिस वक्त वो ब्राह्मण आके सन्यासी आकर ले गए ना, तो उस समय पर एक चक्र धाम जो है पूरा सूना हो गया, मतलब कोई बात करना ही छोड़ दिया, हर एक व्यक्ति चित्रपट की तरह बन गया, कोई बात नहीं कर रहा, इतने भयंकर विरह में थे कि धीरे धीरे करते हुए ये सारे लोग है ना उनको वो असह्य हो गया कि जहाँ नित्यानंद प्रभु ने लीला किया था वो सब स्थान हमको अभी याद कर करके हमारा दिमाग खराब हो रहा है, अभी सब कुछ इतना विफलता आ गई कि एक एक करके एक एक परिवार सब गांव छोड़ के चले गए। उनको वो तालाब, वो रास्ता, वो वन, वो सब देख के उनको सहन करना मुश्किल हो गया, तो सारे लोग चले गए। विरह में अढ़ाई पंडित पद्मावती का निधन हो गया, वो विरह में जी नहीं पाए, वो दोनों ने शरीर छोड़ दिया अपना, सारा गांव खाली हो गया, भूत बंगला बन गया पूरा, एक बुड्ढा खाली रहता था वहां पर। उसको आशा थी कि एक दिन नित्यानंद आएंगे या उनकी पत्नी आएगी। नित्यानंद तो आए लेकिन वो अंतर्धान हो गए, लेकिन एक दिन पत्नी आई, तो वो उस बूढ़े व्यक्ति ने, वृद्ध व्यक्ति ने, वो भी चित्रपट की तरह दुखी था वो बहुत, लेकिन जानवादी को देख के बहुत खुश हो गया, और सारे जगह दिखाए उन्होंने, सारे क्षेत्र दिखाए जहाँ जहाँ लीला किया, तो मैंने कहा था ना आपको कि बचपन में बहुत नाटिकाएं करते थे नित्यानंद प्रभु, तो मैं विवाह से वहां चला गया। कोई बात नहीं, तो एक नाटिका ऐसी की थी जिसमें राम रामायण की लीला चल रही थी, हाँ, और ये लक्ष्मण बने थे, साहजिक थे ना, लक्ष्मण के अवतार हैं, तो कोई राम बना था कोई लक्ष्मण, ये खुद लक्ष्मण बने थे। तो ना वो ड्रामा में लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है इंद्रजीत की, और लक्ष्मण जी बेहोश हो जाते हैं, तो ये ना हकीकत में बेहोश हो गए वास्तव रूप में, और वो ड्रामा के पूरे निर्देशक डायरेक्टर सब खुद ही थे, तो उन्होंने बताया नहीं था कि जब मैं बेहोश हो जाऊंगा तो करना क्या है, तो नोबडी न्यू व्हाट टू डू, तो ये बेहोश हो गए, सब परेशान हो गए, अभी जल छिड़क रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, वो होश ही नहीं आ रहे। फिर मैया बाबा को बुलाया, मैया बाबा आए, और क्या हो गया, हम लोग नाटिका कर रहे थे, लक्ष्मण का रोल कर रहे थे, तो शक्ति लग गई, तो बेहोश हो गए, तो उठ ही नहीं रहे, सब परेशान हो गए, मैया बाबा गांव के बुजुर्ग लोग आ गए, सबका सामने नित्यानंद प्रभु बेहोश पड़े हुए हैं। तो अचानक किसने कहा कि कीर्तन करो, तो उन्होंने जोरदार कीर्तन किया तो होश में आ गए। ऐसे चटपटी लीलाएं करते थे कि सब लोग अचंभित होते थे कि इतनी सारी पुराण की कथा इनको पता कैसे है, सारी पुराण की कथा बचपन में ही बिना शास्त्र पढ़े गुरुकुल में गए, बड़ा आश्चर्य होता था कि परफेक्ट लीला करते थे वो सब पुराणों की, और राम राम अवतार के, वराह अवतार के, नरसिंह अवतार के सब लीलाएं करते थे नाटिका के रूप में। वही परंपरा फिर चैतन्य महाप्रभु ने भी चंद्रशेखर भवन में आगे चलाई, और चंद्रशेखर भवन में भी नाटिकाएं करते थे। एनी वेज, तो फिर वो विवाह किया उन्होंने, फिर विवाह करके वो चले गए करदा में, और फिर जानवा देवी आचार्य बनी, वैष्णव संप्रदाय की प्रमुख आचार्य बनी, महाप्रभु भी चले गए, नित्यानंद प्रभु चले गए, तो गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख आचार्य जानवा देवी बनी, और जानवा देवी ने भी सबको मार्गदर्शन किया है, छह गोस्वामी को मार्गदर्शन किया है, कृष्णदास कविराज को, रघुनाथ दास गोस्वामी को, सबको मार्गदर्शन किया है। तभी अंबिका कालना एक क्षेत्र है वहाँ पर, वहाँ पर ना गौरीदास पंडित रहा करते थे, और गौरीदास पंडित सुबल गोप के अवतार थे, और सुबल गोप जो थे वो कृष्ण के बहुत निकटतम सखा थे, और वो गोपियों के और बीच में जो है ना इंटरमीडिएरी, उज्ज्वल और सुबल, ये गोपियों के और कृष्ण के बीच में रहा करते थे, यानी इनका संपर्क ना ज़्यादा करके गोपियों के साथ रहता था, जब झगड़े होते थे कुछ प्रॉब्लम होता था तो सुलझाने के लिए उज्ज्वल सुबल सखा काम आते थे। तो ऐसे सुबल सखा थे, उनकी उनकी जो शरीर की आकृति थी राधा रानी से बिल्कुल मिलती जुलती थी, तो कई बार राधा रानी का ड्रेस ये पहनते थे, राधा रानी उनके ड्रेस पहनते थे, और कृष्ण को छुप छुप के मिलती थी, ये राधा रानी बनकर घर में बैठते थे जटिला कुटिला के, और इनकी धोती कुर्ता पहनकर पेटा बांधकर राधा रानी जाती थी, क्योंकि इनका चेहरा बहुत सिमिलर था। तो राधा कृष्ण के चटपटी लीलाओं में सुबल जी ने बहुत सहायता किया है। तो ये सुबल जी गौरीदास पंडित के रूप में अंबिका कालना में आए, और ये कृष्ण बलराम का पूजन करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, ये कृष्ण बलराम का पूजन करते करते उनका रूपांतर जो है वो गौर निताई में हुआ। तो अभी मैं ठीक से बता रहा हूँ कि नहीं, लेकिन कृष्ण बलराम को गौर निताई ने कहा, एक बार क्या हुआ, कृष्ण बलराम को लगाया हुआ भोग जो है वो गौर निताई का मूर्ति खा रहे हैं। तो कृष्ण बलराम के मूर्तियां जो है दो विग्रह गौर निताई के साथ झगड़ा कर रहे हैं, ये देख रहे हैं अपने आंखों के सामने, कृष्ण बलराम का विग्रह दोनों गौर निताई के विग्रह से झगड़ा कर रहे हैं। गौर निताई क्या कह रहे हैं, अरे तुम्हारा समय समाप्त हो गया है, तुम चले जाओ यहां से। तो कृष्ण बलराम को हावी कर दिया बहुत वाद विवाद में, कृष्ण बलराम जाने लगे, तो इन्होंने कहा जा रहे हो, बैठो वहां पर। तो वापस आए, वापस भोग लगाया, तो वापस गौर निताई ने डांटा उनको, आप वापस क्यों आए, चले जाओ यहां से। इस तरह से फिर उन्होंने स्वप्न में ये दर्शन किया, तो उनको पता चला कि अभी गौर निताय का समय है, कृष्ण बलराम का युग समाप्त हो गया, अभी दया का समय है, करुणा का समय है। तो एक बार क्या हुआ, ये सुबल जी ना बड़े वात्सल्य से गौर निताय की सेवा करते थे, तो ये इतनी मस्ती करते थे विग्रह होने के बाद भी प्रत्यक्ष होकर मस्ती करते थे, बहुत बहुत ही लीला करते थे, उद्दंड लीला करते थे। एक बार दंडा लेके भागे और गौरांग महाप्रभु की मूर्ति जो साक्षात होकर भाग रही थी, ये डंडा लेके भाग रहे थे, तो भाग भाग के ना इनके शिष्य थे गौरीदास पंडित के, इनका नाम था चैतन्य दास, बड़े सिद्ध महात्मा थे वो भी, और गौरीदास के शिष्य थे वो। तो ये भाग भाग के जाए तो वहाँ पर जहाँ पर गौरीदास थे, जहाँ पर चैतन्य दास थे, वहाँ पर ये भाग गए गौरांग महाप्रभु, मूर्ति से बाहर निकल कर भाग गए, ये डंडा लेकर पीछे भाग रहे हैं। तो तुरंत गौरांग महाप्रभु ना चैतन्य दास के हृदय में घुस गए, वहां पर छुप गए, तब से इनका नाम पड़ा हृदय चैतन्य दास, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इनके हृदय में जाकर छुप गए, गौरीदास से डर कर अपने आप को बचाने के लिए हृदय में जाकर छुप गए। ऐसे गौरीदास पंडित जी ठाकुर जी के साथ प्रत्यक्ष लीला करते थे अंबिका कालना में, जहां पर नित्यानंद प्रभु का विवाह हुआ सूर्यकांत सरकेला की बेटी से। आगे जाकर ये हृदय चैतन्य जो है वहीं पर श्यामानंद दुखी कृष्णदास आए और दुखी कृष्णदास को दीक्षा दिया, किसने? हृदय चैतन्य दास ने, जो स्वामी जी थे, और नाम दिया दुखी कृष्णदास को, और फिर उनको बोला जाओ वृंदावन में प्रचार करो। तो वृंदावन में गए और जीव गोस्वामी के अंदर रहे। तो उसके बाद में बड़ी लंबी कथा है ब्रज की, राधा रानी ने कृपा किया और दुखी कृष्णदास का नाम रख दिया श्यामानंद दास, अपने नूपुर का तिलक सर पे लगा दिया, नूपुर का परमानेंट चिन्ह बना दिया सर पे। हृदय से राधा रानी ने मूर्ति प्रकट की श्याम सुंदर जी की, हृदय से प्रकट की एक में मूर्ति है पूरे विश्व के अंदर, वो श्यामानंद को दे दी। तीन चीज की, एक तिलक लगाया नूपुर का, दूसरा नाम बदली कर दिया दुखी कृष्णदास का नाम श्यामानंद दास कर दिया, और तीसरा हृदय से मूर्ति प्रकट कर दिया और इस मूर्ति का सेवा करो। तो अगले दिन से तिलक अलग लगा रहा है, हाँ नाम भी अलग पुकार रहा है, और राधा रानी ने वार्निंग भी दिया था किसी को बताना नहीं है तुमने, तुमको ये गुप्त रखना है। तो सब लोग समझ गए कि श्यामानंद भ्रष्ट हो गए। ये खबर उधर अंबिका कालना पहुंची हृदय चैतन्य महाराज के पास, वो गुस्सा होकर वृंदावन में आए और आकर उन्होंने अपने शिष्य को बहुत पीटा, तुम कैसे मार्ग भ्रष्ट हो गए हो, हाँ मन घड़ंत बातें करते हो, मन घड़ंत तिलक लगाते हो, मन घड़ंत नाम अपने आप को रखते हो, क्या समझते हो अपने आप को, और कहते हो राधा रानी ने मूर्ति दिया उसकी सेवा कर रहा हूँ तो बहुत। तो बाकी लोगों ने रोका उनको मारते मारते, तो फिर रात को सोए गुरु महाराज हृदय चैतन्य, उनके स्वप्न में राधा रानी आई और उन्होंने कहा कि मैंने ही सब कुछ दिया है उनको, नाम भी दिया है मैंने, तिलक भी नया दिया है और मूर्ति भी मैंने दी है, सब कुछ हकीकत है, तुम क्यों पीट रहे हो उसको, अपने आप को क्या समझते हो। तो रात को उठे ये बीच में और जाके शिष्य के चरणों में गिरे श्यामानंद पंडित के, कहा कि तुम मेरे शिष्य नहीं हो, तुम मेरे गुरु हो, तुमको साक्षात राधा रानी ने कृपा किया है, मैं तो बड़ा पापी और पतित हूं ऐसे करके। तो मैंने ये आपको यूं इसलिए बताया क्योंकि अंबिका कालना से संबंधित लीला है, गौरीदास पंडित की लीला अंबिका कालना में है। वहां से बोट से जाते हैं और वहां पर अंबिका कालना में जाने के लिए बोट से जाते हैं और वहां पर ना जिस बोट से नित्यानंद प्रभु आए थे उस बोट का वो भी है वल्ला, चलाने का सामान है ना, वो भी उधर मंदिर में रखा हुआ है। नित्यानंद प्रभु नवद्वीप से वहां पर बोट से गए थे अंबिका कालना में, बहुत दूर है वैसे लेकिन बहुत रमणीक स्थान है, बहुत प्रिय स्थान है, गौरनिताय का मंदिर है, गुरु महाराज भी वहां पर कई बार गए हुए हैं। तो इस प्रकार से ना करते हम एक चक्र भी पहुंच गए और केवल ऋतु द्वीप बच गया, उसकी तैयारी भी नहीं है और उसके फोटोग्राफ भी नहीं है, लेकिन हमने अंतरद्वीप रुद्रद्वीप सीमांत द्वीप कितने हुआ, अंतरद्वीप रुद्रद्वीप सीमांत द्वीप फिर गोद्रुम द्वीप फिर कोलद्वीप और मोददुरुम द्वीप, ऐसे हमने छः और एक सातवां भी किया ना, दो द्वीप बचे हमारे। तो इस प्रकार से गौरांग महाप्रभु की असीम कृपा है, उनकी औदार्य लीला है, उन्होंने किसी राक्षस का वध नहीं किया, सब राक्षसी प्रवृत्ति का वध करते हैं, उन्होंने जो दिया है हरे कृष्ण महामंत्र उसके माध्यम से हृदय के अंदर की राक्षसी प्रवृत्ति नष्ट होती है। सबसे बड़ी बात यह है डोंट किल द सिनर किल द सिन, पाप को नष्ट करो पापी को नष्ट मत करो, ये जो अनोखा करुणा का सिद्धांत है ये चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्री कृष्ण भगवान ने अपनाया। किसी का वध नहीं किया, सबको वध तो नहीं किया लेकिन सबको कृष्ण प्रेम दिया, सबको कृष्ण प्रेम के सागर में डुबो दिया, कृष्ण प्रेम लहरों में बहा दिया सबको, हाँ सब लोग भाव विभोर हो गए कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में। और उन्होंने कहा कि चैतन्य महाप्रभु ने ऐलान किया है कि मेरे जन्म से 10,000 साल तक जो भी इस हरिनाम संकीर्तन को स्वीकार करेगा वो सीधे गौलोक धाम पहुंच जाएगा, उस 10,000 साल के पश्चात में घोर कलयुग शुरू होगा, फिर उसके बाद में तो घोर कलयुग का वर्णन 12वें स्कंद में दिया है, क्या वर्णन करें उसका, इतना भयंकर स्थिति होगी। तो बुद्धिमानी ये है कि हमारा भाग्य क्या है, कि चैतन्य महाप्रभु 1000 दिव्य युग में आखिरी कलयुग में आते हैं, यानी कि 1000 बाद जब चतुर्युगी होते ना, तो 1000वें चतुर्युगी के जब कलयुग आता है तो उसमें चैतन्य महाप्रभु आते हैं, और 1000वें चतुर्युगी में जब द्वापर युग आता है तब कृष्ण आते हैं। और हमारा भाग्य क्या है, हम जिस कलयुग में जन्म लेकर यहाँ बैठकर बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, इसी कलयुग में केवल 524 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए थे। हम किसी और कलयुग की बात नहीं कर रहे हैं कि वो अगले पिछले वाले कल्प में कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए थे, हमारे ही कलयुग में। इसलिए कहते ना अभी अभी महाप्रभु आए थे, क्योंकि दीर्घ काल के अनंत काल के सापेक्ष पद्धति से विचार किया जाए तो चैतन्य महाप्रभु अभी अभी आए थे, अभी अभी 5000 साल पहले कृष्ण आए थे। तो ये हमारा भाग्य है कि हमारे ही जीवन काल में इसी कलयुग में महाप्रभु का अवतरण हुआ है, और इसी कलयुग में महाप्रभु जी का अवतार होकर ये हरिनाम संकीर्तन का दिव्य युग धर्म का प्रचार हुआ है, तो उसका पूरा लाभ लेना ये हमारा परम कर्तव्य है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए गौरांगा नित्यानंदा, गौरांगा गौरांगा। तो अभी रूपमंजरी आई है क्या, श्याम मोहन जी प्रभु दिखाई पड़ रही है?
प्रभु जी, रुक्मिणी माता जी का लिस्ट में नाम तो नहीं दिखा मुझे,
प्रकट हुई है क्या उधर?
हाँ